यहया ए यहया अब फर्स्ट फॉरवर्ड है अब उनको, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुराने पाक में ऐसे बातें नहीं कही कि जो आपको, अरे फिर उसके बाद ये हुआ, कोई कहानी आपको नहीं सुनाई जा रही, बल्कि आपको जो चीजें आपके लिए जिंदगी के अंदर सबक देने वाली हैं उनको मेंशन किया जाता है। या खुजिल किताब, ए यहया खुजिल किताब, ले लो किताब, बे कुव्वत इंसात कुव्वत के, मजबूती के साथ। मजबूती के साथ किताब को लेना क्या है, ये नहीं कि मजबूती से उसको पकड़ ले बस, नहीं, उसको समझना, उसको सीखना, उसको पढ़ना, उसको याद करना, उस पे अमल करना। इसलिए आता है कि इन्होंने किताब की जो 3 साल की उम्र में किताब को, किताब से मतलब है तौरात, क्योंकि उस वक्त तो तौरात ही थी ना, वो पूरी पढ़ ली थी और 7 साल की उम्र में तौरात के माहिर हो गए थे। और खेलते कूदते नहीं थे, इससे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वैसा अल्लाह ने किसी इससे पहले नहीं किसी को बनाया। बच्चे इनको कहते थे आगे खेलें, तो कहते थे जिंदगी इसके लिए नहीं मिली कि खेलें। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत थी ना वो, अल्लाह ताला की तरफ से खास ही उनके ऊपर इनायत थी। और आपको देखते हैं कि बास बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है ये, तो वो अल्लाह की तरफ से ही उनके अंदर ये होता है, और माँ बाप की मेहनतें भी इसके अंदर शामिल है, वालिद की दुआ भी इसमें शामिल है। तो जब इंसान अपनी औलाद के लिए इस तरह से दुआएं करने वाला हो और इस तरह से उनके लिए एक मिशन पहले से जहन के अंदर है कि क्या इन्होंने करना है, कि यारी सुनी व यारी सुआल, या वो के पहले से ही उनको पता है कि क्या चीज की तरफ इनको लेकर जाना, तो फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो 7 साल की उम्र में तौरात के माहिर होना कोई ऐसी बात नहीं कि कोई इम्पॉसिबल बात हो। और तौरात में ईसा अलैहि सलाम के आने की भी खबर थी, तो यहया अलैहि सलाम ने इनका मददगार बनना था, उनकी तस्दीक करनी थी, उनपे ईमान लाना था, उनका साथी बनना था, उनका बाजू बनना था। तो ये भी थे तो कुव्वत के साथ। अच्छा देखिए, आपके हमें भी तो हमारी किताब को कुव्वत के साथ पकड़ने की तलकीन की गई है, जैसे बनी इसराइल को कहा गया कि आप अपनी किताब को कुव्वत से पकड़े, तो हमें भी ये कहा गया। और कुव्वत से पकड़ना, फिर हम क्या, हम कुरान को कुव्वत से पकड़ रहे हैं? देखिए, रमजान के रमजान कुरान पढ़ लेना या उसको खत्म कर लेना, क्या कुव्वत से पकड़ना? आपका कुरान कितनी देर में खत्म होता है? रमजान में नहीं, रमजान का नहीं पूछ रहे, उसके अलावा बताइए कितनी देर में आप कुरान खत्म करते हैं? होता भी है पूरे साल में खत्म या नहीं? या सिर्फ रमजान के लिए रखा हुआ है आपने उठा के, कि उस वक्त ही पढ़ना है, उस वक्त ही हमने बस इसकी तिलावत करनी है? और फिर सिर्फ पढ़ना नहीं है, जाहिर ही बात है समझना भी होगा, तो तभी कुव्वत से पकड़ना होगा ना, और फिर इसको अमल में लाना, इम्प्लीमेंट करना उसको, ये तब होगा कुव्वत से पकड़ना। सिर्फ पकड़ना नहीं है, कुव्वत के साथ, यानी बिल्कुल सख्ती से इस पे कारबंद हो जाए, ये होगा फिर कुव्वत से पकड़ना। तो हम तो कोई यही समझते हैं कि बस हम रमजान के लिए कुरान नाजिल हुआ है, तो उसमें बस हमने उठाना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास ले ली बस, उसके बाद तो कुछ नहीं है। या हमने बच्चों के लिए ये रखा हुआ है कि सिर्फ एक बार जिंदगी में पढ़ने के लिए कारी साहब लगा दिए, वो उन्होंने पढ़ लिया, उनका नाजरा खत्म हो गया, आमीन की पार्टी कर दी, ये बस हमारा फर्ज अदा हो गया। पार्टी करें लेकिन सारी जिंदगी इसको पढ़ना है, सिर्फ एक दफा नहीं पढ़ना, तभी मजबूती से पकड़ना होगा। अब तो ये होना चाहिए कि फिर, यानी ये एक सिलसिला शुरुआत थी, ये तो आमीन एक शुरुआत है कि अब सारी जिंदगी मैं इसको पढ़ती रहूंगी और उसके बाद इसको समझूंगी भी, इस पे फोकस करूंगी, इसके ऊपर तदब्बुर करूंगी। जबकि समझना तो डिक्शनरी में होता ही नहीं, कि पेरेंट्स की ये भी कभी ख्वाहिश हो कि हमने ये बच्चों को समझाना भी है कि कोई इसको इनको पता होना चाहिए कुरान में क्या लिखा है, ये कितने पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, या कितने पेरेंट्स इस चीज के लिए भी मेहनत करते हैं? अमल करना तो फिर दूर की बात रह जाती है ना, या इसका एक हिस्सा पढ़ लिया, यानी सिर्फ वो पंच सूरा लेके उसको ही पढ़ते गए और बस, ये मजबूती से पकड़ना है किताब को? किताब तो पूरी की पूरी किताब है ना, सिर्फ पंसूरा तो किताब नहीं है। और बसूरे वाली सूरतें भी नहीं समझ होती कि वो उसमें क्या लिखा हुआ। आते नामुल हुक्म सबिया, और हमने उसको हिकमत, हुक्म का मतलब ना बहुत सारी चीजें, इसके बहुत सारे माने किए हैं उलमा ने। हुक्म से मुराद हिकमत भी है, जिसको विजडम कहती है। इल्म भी है, यानी तौरात का इल्म, और इस इल्म पर अमल करना भी है, नबुवत भी है, अकल भी है, ये सब चीजें, यानी समझ बूझ जिसको कहते हैं वो भी है, ये सब चीजें हुक्म में आते। तो जब छोटे बच्चे ही थे ना, तब से अल्लाह ताला ने दी, आतैना हमने दी, देख ले अब हमने दी उसको, इसका मतलब हमें अपने बच्चों के लिए ये चीज मांगनी है तो अल्लाह से ही मांगनी है, अल्लाह ही देता है। हम सोचे कि हम अपने बच्चों को ये कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही देने वाला। ठीक है, तो सभी छोटे बच्चे को कहते हैं। तो अभी जिसकी इमेच्योरिटी नहीं, मिच्योर नहीं हुआ अभी, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ही उनको इतनी मिच्योरिटी दे दी। तो हमें इससे बहुत बातें समझ आती हैं कि बचपन में ही उनको ये सारी चीजें मिल गई थी, हम तो बड़े होते तक भी हमें नहीं समझ होती, नहीं इल्म होता, नहीं हिकमत हमारे अंदर आती। तो युतिल हिकमत मैं शाह युतिल हिकमत फकत ऊतिया खैरन कसीरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको अल्लाह हिकमत दे दे ना, उसको अल्लाह ने बड़ी ही खैर दे दी। तो इल्म अलग चीज होती है, हिकमत अलग चीज होती है, हिकमत भी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, जिसको चाहे हिकमत अता फरमाए। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा इरादा करें कि कोई दिन ऐसा ना हो मेरी जिंदगी में कि मैं जिस दिन कुरान ना उठाऊं, कोई दिन ना ऐसा हो। अच्छा वहनान, अब देखिए अभी इनकी कितनी इतनी प्यारी है, अल्लाह ताला ने इनको दौलतें अता फरमाई, ये दौलत है ये, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला देखें आप पैगंबरों के लिए ये नहीं, कुरान में फरमाता अल्लाह ताला ने उनको इतना पैसा दे दिया, इतना माल दे दिया। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह ताला उनकी कितनी प्यारी दूसरी खूबियां हैं जो अल्लाह के हाँ बड़ी चीज है वो अता फरमाता है। वहनान, और हनान बनाया उनको अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिल्ला दुन्ना अपनी तरफ से हनान बनाया। हनान का मतलब क्या होता है, शफकत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, नरमी करने वाला, आ, आ, जिसको कहेंगे केयरिंग, रहमदिल। और हनान बहुत प्यारा नाम भी है, किसी लड़के का हो सकता है, हनीन लड़की का हो सकता है, उसमें ये जिसमें ये सारी खूबियां, लड़कों में कम ही होता है ऐसे कि कोई हनान हो, तो यानी जिसके अंदर रहम हो, हमदर्दी हो। और हनानन है ना, तनवीन है, तो तनवीन से मतलब ये होता है इसके अंदर भी एक एग्जेजुरेशन आ जाती है कि हाई लेवल का हनान, इसमें ये खूबी बहुत ज्यादा थी। और अपने लिए अपने अंदर ये खूबी थी, लोगों के लिए भी और अपने वालदैन के लिए भी, और वालदैन के दिल में भी इनके लिए थी, और ये भी मतलब है अल्लाह की तरफ से भी इनके लिए मोहब्बत थी, शफकत थी, केयर थी, रहम था, और इनके अपने दिल में भी था, टू वेज हो गया। वह ज़कातन, और ज़कात, ज़कात का मतलब क्या, पाकीज़गी, इंटरनल पाकीज़गी, बातनी जो पाकीज़गी होती है ना उसको ज़कात कहते हैं। जैसे कहते हैं ना तस्किया नफ्स, तस्किया अंदर की होती है, तो अंदर से भी प्योर थे, गुनाहों से पाक थे, दिल साफ था, तकिया तकवा वाले थे, सुभान अल्लाह। वह कहना तकिया मतलब कहना में ना इस्तमरार थे, कंटिन्यूटी, यानी सारी जिंदगी वो ऐसे थे, ये नहीं कि रमजान या जिलहज के दिनों में बड़े नेक बन गए, फिर उसके बाद वो हिजाब भी उतार देते हैं, नमाजें भी पूरी नहीं होती, कुरान तो वैसे ही नहीं पढ़ना, अब अगले रमजान का इंतजार है। तो ऐसे नहीं थे, सारा वक्त सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को वो काम पसंद होते हैं जो कंटिन्यूटी के साथ होते हैं, तसलसल के साथ होते हैं, आप उसको अपनी रूटीन में लेकर आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि कभी किया, कभी फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया, फिर कभी याद आ गया तो कर लिया, नहीं। ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि जो आप कुरान सीख रहे हैं ना, इसमें भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अगर आप हर जुमे को बैठते हैं तो हर जुमे को बैठे और आप उस चीज को अपना बनाए कि मैंने क्लास लेनी है, ऐसे नहीं कभी किया कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया कभी याद है, ये काम पसंदीदा नहीं होते। ठीक है, आप देखिए आप ऑफिस में जाएं, कभी किसी दिन गए, जॉब पे किसी दिन नहीं गए, क्या होगा? क्या आपको वो पे देते हैं? नहीं। आप इस तरह तो छुट्टियां नहीं कर सकते कि मेरा दिल कर रहा था तो मैं आ गई, दिल नहीं करता तो नहीं आई, आज बच्चों की छुट्टी है तो मैंने भी छुट्टी कर ली, ऐसे नहीं आप करते। आपको पता होता है कि आपने जो कमिटमेंट की है मैंने पूरी करनी है, लेकिन क्या बात है कि दीन के कामों में हम हर वक्त में कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हैं, आज थक गई, आज रात को नींद नहीं सही आई, आज बच्चों की छुट्टी हो गई, आज वेकेशन पे चले गए, आज घर में शादी हो गई, आज दावत है, आज फलां है, हर वक्त हमारे कोई ना कोई चीज तो चलती, ये तो चलती ही रहेगी, ये तो रूटीन है जिंदगी की। वो देखिए क्या ना तकिया, वो थे ही मुत्तकी, सारा वक्त ही सारी जिंदगी ऐसे रहे, और तकिया में भी एग्जेजुरेशन है, बहुत ज्यादा मुत्तकी, और मुत्तकी वो होता है जो अल्लाह से डर डर के जिंदगी गुजारने वाला, हर वक्त कॉन्शियस रहता हो, हर वक्त केयरफुल रहता हो, ऐसा नहीं कि शादियों में दीन सारा एक तरफ, जब किसी के दावत में जाए तो तब दीन भूल गया, जब छुट्टियां गुजारनी हो तो तब दीन ही याद नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा भी था कि नहीं, हमेशा ही उनको कोई हालात नहीं करते, जब अपने फ्रेंड्स के अंदर हो तो तब भी सारा कुछ याद ही भूल जाता है कि भाई हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं याद रहते, आपे से बाहर होने लगते हैं। नहीं, वो तकिया वो है जो हमेशा केयरफुल रहे कि मेरे किसी बात से, किसी काम से, किसी किसी स्पीच से, मेरी कहीं कॉल या फेल में कहीं कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे अल्लाह ताला नाराज होता हो, मेरे से कोई नेकी ऐसी ना रह जाए जो अल्लाह को राजी करने वाली हो। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली इसमें थे। अल्लाह वो बर्रम भी वालिदही, और नेकोकार अपने वालदैन के साथ। अब यही खूबियां आगे ईसा अलैहि सलाम की भी आएंगी, तो हम यहाँ पे जब देख लेंगे तो आपको वहां पे भी उसी चीज को आप समझ लीजिएगा। देखिए वालदेन, इनके वालदेन कैसे हैं बताएं, क्या जहन में आता है आपको कि एक बेबी हुआ है उसके वालदेन कैसे हैं, इतने बूढ़े, बुढ़ापे की हद को पहुंच गए, जैसे कहते हैं ना बुढ़ापे की औलाद, जब बुढ़ापे की औलाद होती है तो इंसान को उसको पालना भी मुश्किल होता है, परवरिश करना, उसको तालीम देना भी कितना मुश्किल। देखें जो खुद जिनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, वो खुद ऐसे लागर हो चुके हैं, उनके लिए आपका मतलब है औलाद की परवरिश करना आसान होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ऐसी खूबसूरत सिफात दे दी थी ना, सुभान अल्लाह, कि ये भी अल्लाह की तरफ से ही है कि वो अपनी माँ बाप के लिए इतनी नेकी करने वाला, वरना माँ बाप तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते ऐसे बच्चे को। अच्छे भले जवान माँ बाप के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, तो जो इतने बूढ़े हो तो बच्चे तो उनको कुछ समझे ही ना, तो लेकिन सुभान अल्लाह जो बाप ने दुआ की थी ना कि अल्लाह मेरा भी वारिस और आले याकूब का भी तो, और जो राजी करने वाला हो तुझे, तो फिर वो औलाद थी कि जो वाकई इतनी खूबी रखने वाली थी कि सुभान अल्लाह अपने वालदेन के साथ भी बर वाला, नेकी करने वाला, और बर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, बरों भी वालिदे मतलब तकवा भी, ईमान भी, सबर, शुक्र, ये सारी खसूसियात हैं, तो तकवे का भी आप समझ ले हाई लेवल, सुभान अल्लाह। और आपको पता है अल्लाह ताला के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों के अंदर अगर किसी का हक हमारे पर सबसे ज्यादा है तो वो हमारे वालदैन का है, और उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा इंसान को मुश्किल हो जाती है कि वो उनके साथ अच्छाई करे, क्योंकि एक तो वालदैन के साथ इंसान फ्रैंक बहुत होता है, दूसरे वालदैन को वो जाहिर है कुछ वो कुछ कह भी देते हैं तो वो उनके साथ कुछ आगे से बोल देता है, कुछ आगे कोई बदतमीजी कर देता है, ऊंचा बोल लेता है, और हम कितना ज्यादा हकूक वालदेन के पढ़ चुके हैं कि उनके लिए उफ भी ना किया जाए, लेकिन हम इस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कयामत की निशानियां पूरी हो रही हैं, और एक बहुत बड़ी निशानी कयामत की ये है कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, यानी वो जो बेटा पैदा किया है ना वो उसका बेटा नहीं है, वो तो अपने मालिक को उसने जन्म दे दिया, कि वो आज कहते हैं वालदेन के अब तुम हमारे वालदेन हो तो हम तुम्हारे बच्चे हैं, ऐसे ही लगता है, आज वालदेन बच्चों को देख के चलते हैं कि इनके मूड ना खराब हो जाएं, ये हमसे नाराज ना हो जाएं, ये हमसे मुंह ना मोड़ लें, तो जो उनके पीछे 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 ऐसे फिरते हैं जैसे कि उनको फिरना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए। वालदेन सोचते हैं कि हमसे कहीं नाफरमानी ना हो जाए औलाद की। ये सही है, वाकई ऐसा है? कोई ऐसी चीज जो ये हुक्म दे दें तो ये ना हो जाए कि हम पूरा ना कर सके? अल्लाह हू अकबर। लेकिन वो अपने वालदेन के साथ हुस्ने सलूक करने वाले थे, और आपको पता है वालदेन की रजा में अल्लाह की रजा है और उनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। अल्लाह हू अकबर। वलम यकुन जब्बारन, और ना था वो जबर करने वाला। जबर करने वाला मतलब यानी जबर होता है ना प्रेशर डालना, तो ऐसा नहीं था कि वो पुशी हो या बॉसी हो और ऐसी या और नाफरमान नहीं था। यानी ये नेगेटिव सिफात हैं, उनमें कोई ऐसी नेगेटिव सिफत थी नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम भी अपने साथियों के लिए कितने मेहरबान थे। और यहया अलैहिस्सलाम भी देखें कैसे ना जब्बार थे ना असिया थे, सुभान अल्लाह, किसी के लिए भी नहीं थे। और आज मुसलमानों के अंदर इस तरह की चीजें रही ही नहीं है। मुसलमानों के अंदर ऐसा ऐसे अखलाक, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि हमने इन लोगों से वही चीजें सीख ली, जैसे ये लोग अपने वालदैन का मजाक उड़ाते हैं, ये लोग अपने वालदैन को कुछ समझते नहीं, इतनी उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह आज हमने भी सीख ली यही चीजें कि वालदैन तो कोई चीज ही नहीं है। और जैसे जैसे आप पिछले दौर में जाते जाएंगे आप देखेंगे कि वालदैन की इज्जत होती थी, अब जैसे आगे दौर बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा वालदैन को डिग्रेड किया जाता है, उनको कुछ समझा नहीं जाता। और जब्बार की जो सिफत है ना अल्लाह ताला के लिए तो पॉजिटिव में है, क्योंकि वो जब अल्लाह ताला को अल जब्बार कहा जाता है, उसके अस्माए हुस्ना में से एक अल जब्बार, तो यानी प्रेशर डालने वाला, यानी जो हड्डी को प्रेशर डाल के सीधा कर दे तो वो हमें सही कर देता है प्रेशर डाल के। लेकिन इंसानों के लिए जबर अच्छी चीज है, कहते ना जबर किया उसने, उसको प्रेशराइज करा, तो वो ऐसे नहीं थे। अल्लाह ताला के नजदीक ऐसा इंसान ही अच्छा है। वो हदीस में आता है ना कि जिसके ऊपर जहन्नुम हराम और जो जहन्नुम पे हराम है वो कौन है? वो हय्यिनुन लय्यिनुन करीबुन, जो सहलुन, जो इजीली एक्सेसिबल हो, इजी गोइंग हो, नरम हो, लय्यिन हो, और ये सारी उसकी सिफात बताई गई जो जहन्नुम के ऊपर हराम और जहन्नुम उसके ऊपर हराम। तो हम इनमें देखें कि हमारे अंदर कितनी सिफात हैं। क्या हम भी इजी गोइंग हैं लोगों के साथ? बाज लोगों के साथ मामला करना इतना मुश्किल होता है कि वो जब उनके साथ मामला करें तो टेढ़ी ही बात करते हैं, इजी नहीं है, इजी गोइंग नहीं है। प्लीज इजी गोइंग हो लोगों के लिए, चाहे आप एक GPL हैं, एक स्टूडेंट हैं, एक बेटी हैं, एक बीवी हैं, इजी गोइंग बने और लयन बने, नरम बने, इनकी सिफात में आता है। हम कहते हैं नहीं, मुझे सख्त होना है तो ताकि कोई मेरे से फायदा ना उठा ले। कोई नहीं आपसे फायदा, देखिए वो हनान थे, सुभान अल्लाह, नरमी। हमारे बारे में लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, कभी जानने की कोशिश तो कीजिए कि क्या वो हमें लयन देखते हैं कि ये नरम है, जेंटल है, सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट हार्टेड है, इजी है, इजीली एक्सेसिबल है। तो वो ऐसे बच्चे थे, सुभान अल्लाह, आसिया भी नहीं थे, नाफरमान भी नहीं थे, नहीं, इतने सुकून देने वाले बच्चे थे। तो ये तो खास अल्लाह ताला की रहमत है किसी वालदैन के लिए। अल्लाह ताला ने बच्चा दिया, लेकिन देखें देर से आया, लेकिन कितना प्यारा बच्चा दे दिया। और हम पिछली सूरत में पढ़ चुके हैं कि एक खैर में भी अगर डिले होता है ना तो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत होती है, उसके पीछे भी कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए खैर होती है। अल्लाह ताला को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमारे लिए उसमें खैर होती है। अस्सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु यौम युबअथु हय्या, और सलाम हो उसके ऊपर, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सलाम भेजा उनके ऊपर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनको मौत आई, और जिस दिन वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। और उलमा कहते हैं ये तीन औकात जो है ना इंसान की जिंदगी के सबसे मुश्किल होते हैं। जो पैदाइश का वक्त होता है ना, वो भी मां के पेट से देखिए कि इंसान कुछ भी नहीं था, पैदा हुआ तो वो एकदम डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया जिससे उसका कभी सामना नहीं हुआ था। कभी उसने इंसान नहीं देखे, कभी उसने बाहर सांस नहीं लिया, कभी उसको पता ही नहीं दुनिया है क्या, ठीक है, तो वो इसमें आया। लेकिन खैर वो एक होश का जमाना नहीं होता, मगर इंसान के लिए एक नई चीज होती है। दूसरा जो होश का जमाना बाकी जो दो है ना वो होंगे जिस दिन वो दुनिया से जाता है ना, वो भी बड़ा ही मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि जो मौत की सख्तियां उसके लिए भी दुआ करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए ये दुआ मांगा करते थे। तो वो वक्त भी बड़ा ही सख्त है, बड़ा मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है। एक तो मतलब वैसे सलाम भेजना ना, जैसे हम सलाम भेजते हैं किसी के ऊपर ग्रीटिंग के तौर पे, और एक है सलामती है उनके लिए, अमन और सलामती जिसको हम कहते हैं, उनके लिए सलामती का पैगाम है जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन उनको मौत, और वो तो शहीद हुए थे। और यौम युबअथु हय्या, जिस दिन वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। आप सोचें जब मौत भी आती है तो इस दुनिया से एक ऐसे जहान के अंदर जाना है जो ना कभी देखा ना कभी सुना, सुना तो खैर है लेकिन ना कभी देखा ना कुछ उसका एहसास है, ना उसको कोई पता है कि वो यानी हम सुनते भी जो है ना, ऑब्वियसली हमारी इमेजिनेशन में वो चीजें उस तरह नहीं आ सकती। जब हमें मुनकर नकीर का बताया जाता है तो हम नहीं इमेजिन कर सकते उन फरिश्तों को, हालांकि बताया जाता है उनकी आंखें ऐसी होंगी, वो ऐसे जमीन को कुरेते हुए आएंगे, वो ऐसे होगा, कब्र में ऐसा होगा, बिठाया जाएगा, ये सवाल की, लेकिन हम उसको उस तरह से नहीं इमेजिन कर सकते जैसे उस वक्त कैफियत होगी। हम मौत को नहीं जान सकते जब तक उससे गुजरेंगे नहीं, हम अगले जहान की बातों को समझ ही नहीं सकते, कयामत के दिन को हम नहीं उस तरह से विजुअलाइज कर सकते, ठीक है, एक एक इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन भी हमारी लिमिटेड है, ठीक है। तो जिस दिन इंसान उठाया भी जाएगा ना जिंदा करके, तो वो तो मैदाने हशर होगा उसका, तो हम सोचें कि वो कितना मुश्किल वक्त होगा, उस दिन भी अल्लाह की तरफ से इनके लिए सलामती है। देखें जिसको मौत के बाद सलामती मिल जाए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अमन और सलामती जिसको हासिल हो जाए कि अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त ही सलामती दे दी, कि इन तीनों औकात में इनके लिए सलामती। और देखें अब हम तो भूल चुके, जो भी हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन का तो हमें याद भी नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मरने का और दोबारा उठने का ये बिल्कुल होश व हवास के टाइम्स होंगे और बहुत मुश्किल टाइम्स है, इसलिए उनका जिक्र किया गया। अगर कोई भी और अगर मुश्किल वक्त होता ना जिंदगी का, हालांकि बड़े मुश्किल हालात यहया अलैहिस्सलाम ने देखे थे और उनको शहीद कर दिया गया, सोचे कि इनकी मुखालफत कितनी की गई होगी, तो उन सारे औकात को नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल वक्त है ना वो मौत का वक्त है, और उसके बाद वो जब इंसान उठेगा, जिन औकात को हम मुश्किल समझते हैं, क्या हमने मुश्किल समझा कि मौत कितनी मुश्किल वक्त है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, या जिस दिन उठना है वो बहुत मुश्किल वक्तों का, उस दिन की मुझे तैयारी करनी है, मेरी सारी तैयारी ना इस दुनिया के लिए है, सारी तैयारी यहीं के लिए और यहीं पे गुम हो जानी। इन औकात को हम मुश्किल समझते हैं कि हल्ला क्या होगा अगर जॉब चली गई है, क्या होगा अगर वो मुझसे रूठ गया, अगर क्या होगा अगर हकूमत में कोई मेरे मुखालिफ होगा, क्या हो गया अगर मेरे दोस्त मुझे छोड़ जाए, और क्या हो गया अगर रिश्तेदार नाराज हो जाए, ये हमारे लिए मुश्किल है, क्या हो जाएगा अगर मैं बीमार हो जाऊं, ये सारी हमें मुश्किलें लगती हैं कि मेरी सेहत चली जाए, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ जाए, हाय उनको देख देख के चीजों को हम डरते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम इस चीज की दिन के लिए फिक्र करें जिस दिन मुझे दुनिया से जाना है और जिस दिन मुझे वहां पे उठना है। इसमें अल्लाह मुझे सलामती मिल जाए, इसमें हम दुआएं मांगे कि अल्लाह उस दिन मुझे अपनी तरफ से अमन और सलामती अता फरमाना। तो कयामत के दिन भी उनके उनको बहुत बड़ा एजाज दिया जाएगा, बड़ा शर्फ होगा, बड़ी इज्जत होगी, बड़ी सलामती होगी उस दिन, जो महफूज हो गया उस दिन, जिसको सिक्योरिटी मिल गई, और क्या चाहिए, उस दिन सेफ होंगे वो। हमें पता है कि हम सेफ होंगे, हमें पता है कि हमारे लिए सलामती होगी मरते वक्त या अगले। ये दो दो इन चीजों पे गौर कीजिए, यौम यमूत व यौम युबअस हय्या, क्या हमें पता है? फिर हम क्या करें इस दिन के बारे में कि हमें भी सलामती मिल जाए। अब आगे जिक्र आता है हजरत मरियम का। कहा जाता है कि ये, जैसे कि आपको पता है, इनकी पैदाइश का भी अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इनकी पैदाइश का जिक्र फरमाया है, और कैसे इनकी वालदा ने मन्नत मानी थी कि मैं अपनी बच्चे को जो भी पैदा होगा इसको मैं वक्फ कर दूंगी हैकल की जो खिदमत है उसके लिए। तो अगर पीछे जाके देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम के 12, जो आगे बाद में 12 कबीले थे ना, तो बनी इसराइल के जो थे, उनमें सबने ड्यूटियां तकसीम कर ली थी हैकल की खिदमत के लिए। तो बनू लावी जो हारून अलैहिस्सलाम का कबीला था, उसके जिम्मे था कि वो हैकल की सफाई सुथराई और इसके काम वगैरह, इसकी खिदमत करें, बनू लावी के पास था कि ये खिदमत। तो इन्हीं के खानदान से जकरिया अलैहिस्सलाम थे, और जकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में हजरत मरियम थे। तो उन्होंने फिर हजरत मरियम को हैकल में ही एक जगह दे दी थी जहां पे ये इबादत करती थी, तालीम लेती थी, तालीम देती थी, ये हैकल की खिदमत करती थी वहां पे। तो ये हमें पता चलता है इनकी जिंदगी से कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वो वहीं पे रहाइश पर पजीर थी। तो अब कहा जा रहा है वज़कुर फिल किताबी मरियम, और जिक्र करें किताब में मरियम अलैहिस्सलाम का, इज़िन तबदत, जब वो तन्हा होगी हो गई, मिन अहलीहा मकानन शर्कीया, जब वो अपने घर वालों से तन्हा एक जगह में मशरिक की जानिब, बैतुल मकदस के मशरिक की जानिब, इसीलिए आज ईसाई भी जो है ना वो मशरिक की जानिब ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उस वक्त तो जाहिर है वो ईसाइयों का तो कोई वजूद नहीं था, यहूदी थे, तो वो भी इस तरफ को फेस करते थे। तो वो वहाँ वो इस तरफ को फेस करके ये अपने घर भी उस तरफ, ईस्टर्न तरफ ना, ईस्ट की जानेब इन्होंने बनाई होती है अपनी इबादत के लिए, अपना किबला बनाते हैं। तो उस वक्त हजरत मरियम तो उन्हीं के जमाने में थी, तो वो भी उस तरफ हैकले सुलेमानी में मशरिक की तरफ इबादत करती थी। तो उन्होंने अपने अहल से अलग हो गई, वो पता है जैसे कि ये वहीं पे रहती थी, लोगों से अलग थलग होकर इबादत करती थी। और हम देखते हैं कि जो इबादत में फोकस है ना, वो तभी हो पाता है जब इंसान लोगों से अलग होके इबादत करे। अगर आप लोगों के मजमे में नमाज पढ़ें तो आधे टाइम तो आपको लोगों की बातें ही सुनती रहेंगी, कोई क्या डिस्कशन कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या हो रहा है। तो सारी नमाज के अंदर फोकस, ध्यान आपका बजाय नमाज के इधर उधर ही रहेगा। तो इनको हम देखते हैं कि इनका फोकस अल्लाह ताला की तरफ, और उसके लिए उन्होंने अपने लिए चूज किया कि सबसे अलग होके मशरिक की जानिब वो अपनी इबादत के लिए अपने आप को उन्होंने मुख्तस कर लिया। और आप इनको भी देखेंगे कि इनकी वालदा ने, जाहिर है उनकी वालदा भी कैसी मुत्तकी परहेजगार होंगी, जिसने अपनी बच्चे के लिए, आने वाले बच्चे के लिए, अभी दुनिया में आया नहीं है, कि उनके लिए ये नजर मान ली थी कि मैं यहाँ पे खिदमत के लिए दूंगी। तो इसे हम देख सकते हैं कि हजरत मरियम में भी फिर वही सिफात आगे आ रही है, और किफालत करने वाले भी जकरिया अलैहिस्सलाम। तो जाहिर है वो फिर उनके अंदर जाहिर है जो जिसकी जेरे किफालत होंगी उनकी भी तरबियत का एक इसमें पहलू है। तो सेक्लूड करके एक तरफ करके अलग जगह पर वो इबादत करने लगी, और जिसको हम एतकाफ कहते हैं अपने यहाँ। तो ये पिछले अंबिया की भी सुन्नत रही है, रोजमर्रा जिंदगी से अगर इंसान थोड़ा सा वक्त निकाल कर एक जगह बैठ जाए, खुद को अलग कर ले बाकी सब लोगों से और थोड़ा सी गौर और फिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे, तो इसमें सुकून भी बहुत है। और ये अभी जवान है जिस वक्त की ये इबादत कर रही है। बाज लोग सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो तभी हमको इबादत के लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे, जवानी में कौन सी इबादत, जवानी तो फन करने का नाम है। लेकिन हजरत मरियम की कहानी से हमें ये बहुत अच्छी तरह सबक मिलता है कि जवानी में जो इबादत है उससे ज्यादा खूबसूरत इबादत नहीं कोई हो सकती। यानी इंसान एक बचपने की भी इबादत हो सकती है, एक बुढ़ापे की भी हो सकती है, लेकिन जो जवानी की इबादत है शऊर के साथ है, ताकत के साथ है, हिम्मत के साथ है, उसका मुकाबला नहीं आप कर सकते। बचपन में इंसान को शऊर ही इतना नहीं होता, समझ नहीं होती, बस जैसे माँ बाप ने कह दिया वैसे कर ले। बुढ़ापे में हिम्मत नहीं होती, जितना इंसान भी कोशिश करे ना, जितने आपकी जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी आप देखेंगे आपके अंदर कमजोरी आती है, आप ताकतवर नहीं होते जाते। नहीं ताकत तक 30 तक ताकत रह जाती है, उसके बाद तो मतलब इंसान कमजोरी की तरफ जाने लगता है। और हर साल आप अपने आपको देखेंगे कि कमजोरी की तरफ और बढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी हिम्मत और बढ़ेगी कि आप और नमाजें पढ़ लें, आप और तहज्जुदें पढ़ लें, आप और रोजे रख लें, ऐसा नहीं होता। लिहाजा जो वक्त मिले इंसान को उसके अंदर ही कोशिश करें कि आप उसी हिम्मत से जितनी भी आपके पास है कभी इंतजार ना करिए कि आगे वक्त आएगा तो उसमें करूंगी। जो आज है ना आपके पास वैसी हिम्मत कल नहीं होगी, इसलिए आज से फायदा उठाइए। तो वो देखें जवानी के अंदर जिस वक्त लोग फन करते हैं, जिस वक्त लोग एक ख्वाहिशात और एक हार्मोन्स उसके हाई होते हैं तो एक और तरफ ही ध्यान लगा होता है बाज लोगों का मजे करने में। आज आप उठा के देख लें जवानों में कितने काम होते हैं जो अल्लाह की तरफ आते हैं, और जवानी का हिसाब अल्लाह ताला ने अलग से लेना। तो जो भी 20s में हो, 30s में हो, वो सोचे इस बात को कि इस वक्त का हिसाब मुझे देना पड़ेगा, और अल्लाह ताला ने पूछना है कि इस हिम्मत को किधर लगाया, इस अक्ल को, इस समझ को। फतखजत मिन दूनी हिम हिजाबा, तो उसने कर लिए उनसे आड़, एक पर्दा कर लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना इतकाफ में भी हम एक अलग होके बैठ जाते हैं, एक पर्दा भी तान लेते हैं, किस लिए, फोकस के लिए, कि प्राइवेसी एक मिले उसके अंदर पूरी यकसुई के साथ। वो आप मस्जिद में भी जाते हैं आधा टाइम तो लोग एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, फलां आ गया कि नहीं आया, वो अच्छा वो आई भी, आप देखेंगे ध्यान इवन यहां तक के अस्तगफिरुल्लाह लोगों को देखा नमाज में भी ना बजाय सज्दे की जगह पे अपनी नजरें होने के वो इधर उधर देख रहे होते हैं, मुंह उठाया होता है वो उधर से कोई जा रहा है, कौन सी ये नमाज हो रही है। तो इबादत फोकस चाहती है, डिस्ट्रैक्शन से दूरी होना चाहिए। लिहाजा इसलिए अपने इवन फोन्स को भी आप हटा दें, दूर कर दें, ये नहीं है सज्दे की जगह पे फोन रख लें ताकि अगर किसी का फोन या मैसेज आए तो चलो उस पर भी नजर। कौन सी हमारी इतनी मुश्किल पड़ जाती है कि हम एक सेकंड के लिए भी फोन को नहीं हटा सकते अपनी नजर से। आप देखते हैं अब क्लास हो रही होती है बीच में फोन बज रहे होते हैं, इतने फोन आते हैं, सोचते हो कि अगर अभी तो हम कह देते हैं लाइव क्लास में तुम कहते हैं अपने फोन बंद कर दे, ये जो ऑनलाइन क्लास में इतने इसमें कितने लोग हैं जो अपने फोन बंद करके एक साइड पे रख देते हैं कि मेरी नजर भी ना पड़े, और कितने लोग हैं जो अपने नोट्स के साथ फोन रखे हुए हैं कि साथ मैसेज भी पढ़ती जाओ। जितनी देर आपने मैसेज पढ़ा या आप फोन उठा रही हैं उतना सबक तो आपका चला गया ना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये 2-2.5 घंटे ही अल्लाह ताला के लिए अपने आप को बिल्कुल डेडिकेट कर दें कि ये टाइम अल्लाह तेरा है। कोई वक्त तो ऐसा हो जिसमें हम कट ऑफ हो जाएं दुनिया से और हम सब लोगों से कट ऑफ हो के सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान लगा लें। कोई वक्त तो ऐसा हो दिन में, कोई एक वक्त भी नहीं, यकीन करें ऐसा होता। मिनट मिनट में कभी किसी का मैसेज, कभी किसी की कॉल, कभी कोई टेक्स्ट, कभी कोई टेक्स्ट, कभी कितने नोटिफिकेशंस हमने लगाए होते, कभी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर फेसबुक पे फलाने ये कह दिया, फलाने ने ये डाल दिया, फलाने ने, अब साइंस भी आज बताती है कि जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, अपने बच्चों को तो हम बहुत चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, इनसे फोन ले लूं, बेटा पढ़ाई का, खुद आप पढ़ते वक्त क्या करते हैं? आप खुद बताइए, बच्चे को आप चाहते हैं कि वो पढ़ते वक्त साथ किताब के फोन रख ले? उसकी तो एक दुनिया की पढ़ाई है, लेकिन उसमें आप नहीं चाहते कि उसकी कोई डिस्ट्रैक्शन हो। मगर हाँ, कुरान ही इतना फालतू है कि इसके साथ डिस्ट्रैक्शंस भी होती रहे तो ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं। अगर मैं भी अपना फोन देखना शुरू कर दूं तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी? और आप अगर जो पढ़ने वाले हैं वो अपना फोकस इधर उधर करके, इधर फोन भी सुन रहे हैं, इधर बातें भी हो रही हैं, वो साइंस कहती है कि आपको 15 मिनट्स लगते हैं दोबारा अपना फोकस करने के लिए। 15 मिनट्स यू नीड, 15 मिनट के लिए तो आप गए ना, आप वो जिसने जो आपके साथ बात की है, आपका दिमाग तो उसके ऊपर चला गया। अब आपको वापस अपने आप को लाने में टाइम लगता है। आप इम्तिहान में बैठे में साथ फोन रख ले, कभी करेगा कोई? हाँ, लेकिन हमारी ये सारी अकलमंदी हमारे बच्चों के लिए तो जरूर है, हम बच्चों के लिए ये बिल्कुल नहीं चाहते। हर माँ शिकायत करती, देखो बच्चों फोन ने बिगाड़ दिया ये कर, लेकिन खुद हमारे क्या हालात है उसके ऊपर नहीं कभी देखते। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो नहीं देखते। हम सब पढ़ाई के दौरान साथ फोन रखे बैठे होते हैं। तो प्लीज आइंदा से अपने फोन बंद करके एक साइड पे रखते हैं कि आपकी नजर ना जाए वहां पे। बेल को ऑफ कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, यकीन करें। 2.5 घंटे बाद भी दुनिया वहीं की वहीं होगी, कयामत नहीं आ जानी इतनी देर में। ना ही आपके करोड़ों के सौदे हैं जो आपसे रह जाएंगे, जो आपका नुकसान हो जाए। हाँ, मगर ये नुकसान है जो हो जाएगा, एक दफा बातें निकल गई तो फिर बस निकल गई, आगे पहुंच गए। उसके बाद आपको पता ही नहीं कहाँ से शुरू किया था, क्या बात हो रही थी, फिर सोचने की कोशिश करते हैं, फिर एंड में सवाल कर देते हैं, अच्छा इस ये बात नहीं समझ आई। समझ कैसे आएगी, वो तो बात बता भी गई, लेसन में बता दी गई, आप उस वक्त कहीं और पहुंचे गए थे। तो आज के वक्त में डिस्ट्रैक्शंस उससे कहीं ज्यादा हैं जो उस वक्त जमाने में होंगी। उस समय क्या जमाने में डिस्ट्रैक्शन ज्यादातर हो सकती हैं, वो भी हैकल में रहते हुए क्या हो सकती हैं, सोचें क्या डिस्ट्रैक्शन होंगी उनको, ना कोई फोन ना कोई कुछ और चीज ऐसी थी। फिर भी खुद को अलग किया उन्होंने, हिजाब किया, ओट की, ताकि प्राइवेसी के साथ फोकस किया जाए। क्या अल्लाह ताला की जात नहीं है इस काबिल कि हम उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करें, चंद घंटे के लिए, चंद मिनट के, हमारी नमाजें तक भी फोकस नहीं। और तो और सोचें, और तो कोई बात सो छोड़ ही दे, हमने अपने आप को डेडिकेट कर दिया इतना ज्यादा दुनिया के लिए कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। खाना बना रहे हैं तब किसी से बात कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं तब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंचे हुए दुनिया में, सफाई कर रहे हैं तब हमारा दिमाग कहीं और। ऑल द टाइम वी आर बिजी इन दिस वर्ल्ड। यहाँ किसी की बात याद कर रहे हो जो उसने ऐसे कह दिया था, अच्छा मैं आज ये पका लूंगी, अच्छा मैंने वहां जाना है, अच्छा ये हो जाए, सारा वक्त हमारा दिमाग चल रहा है इसी में। किस वक्त हम फोकस होंगे, कब हम लर्न करेंगे टू फोकस? तो जब वो ऐसे अलग हुई तो फिर फअरसलना इलैहा, तो भेजा हमने उनकी तरफ रूहाना, अपनी रूह को। रूह का जब लफ्ज आता है ना कुराने पाक में तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए आता है, उनको रूहुल अमीन कहा गया। वो कुरान लाने वाले थे, जो भी इंसानियत के लिए रूह है, उसकी रूह की जिंदगी है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये निस्बत रूहाना, हमारी रूह, अपनी रूह का मतलब ये नहीं अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला की तरफ से कोई रूह, ये निस्बते तशरीफ ही है ओनर के लिए। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं बैतुल्ला, तो ये नहीं कि वो अल्लाह का घर है, जैसे बच्चे समझ रहे थे पता नहीं अल्लाह ताला का घर है यहाँ पे, नहीं, वो इज्जत इज्जत दी जाती है, नाखतुल्ला अल्लाह की ऊंटनी, उसको इज्जत दी गई है, ठीक है। तो फतमसला बशरन सबिया, तो उसने अपने आप को तमसील कर ली, शक्ल अपना ली, जिससे आज हम बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हम ये जो इसमें देखते हैं हर जगह बच्चों के भी उसके अंदर आ रहा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रक है वो ट्रांसफॉर्म होके बड़ा सा आदमी बन गया, वो एक आदमी है वो हल्क बन गया, फिल्म कुछ कोई चीज बन जाता है, वो कोई चीज बन जाता है, बड़ी सी कोई चीज बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह की चीजें स्क्रीन पे देखते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एक बशर अंसबिया, एक बशर में, एक आदमी में, जो सबिया था वेरी हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग आदमी में ट्रांसफॉर्म हो गया। दो वजूहात हैं क्यों वो ट्रांसफॉर्म हुए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे ना, क्योंकि रूहाना है, तो क्यों हुए ट्रांसफॉर्म? इसलिए, नंबर वन, इसलिए क्योंकि कोई इंसान एक फरिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको देखना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बर्दाश्त नहीं हुआ था जब पहली दफा देखा था, बेहोश हो गए थे। 600 पार थे उनके, और दो तो ऐसे हैं कि दो पार भी खोलते हैं तो ऐसे हैं कि मशरिक से मगरिब तक भर जाए, तो पूरा उफक उनके परों से ढका हुआ था। और नंबर टू, ये हजरत मरियम का भी एक इम्तिहान था, सुबहान अल्लाह, कि एक जवान लड़की और उसके सामने हसीन लड़का आ जाए कोई, और वो भी तन्हाई में, बिल्कुल अकेले हैं, किसी को कोई पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सुभान अल्लाह, जाहिर है अल्लाह ताला ने उनकी तो इतनी तारीफ फरमाई है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली, सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ फरमाई है ना, हजरत मरियम की, दो ही औरतों की वहां पे तारीफ फरमाई गई सूरह तहरीम के, आप एंड में देख लेंगे, एक बीबी आसिया की और एक हजरत मरियम की। सुभान अल्लाह, किस क्या ऑनर है उनका जिनकी तारीफ अल्लाह ताला फरमाए, और जिनको अल्लाह ताला फरमा दे के इस कालतिल मलाइका तो या मरियम इन अल्लाह इस्तफा की व तहर की इस्तफा की अला निसाइल आलमीन, इतनी रश आता है ये आयत पढ़ के, सूरह आले इमरान की है 30 या 42 है शायद, तो वो कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला ने आपको चुना है सारे जहान की औरतों पर, सुभान अल्लाह। और आप सरम ने जिनकी, जिन औरतों की तारीफ फरमाई, और जिनको सबसे ऊपर, औरतों में भी सबसे ऊपर जिनका मकाम है, उनके अंदर एक इनका जिक्र आता है, और बीबी आसिया का, हजरत खदीजा का, तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, के अल्लाह ताला ने इनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया इंसानी सूरत में। और आप देखें, इससे वो नबिया नहीं हो गई, क्योंकि कुरान कहता है कि नबी सिर्फ आदमी हुए हैं, कभी कोई औरत नबिया नहीं हुई, तो उनके आने से वो नबिया नहीं बन गई, ठीक है। तो कालत इन्नी आऊदु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया, फौरन कहती हैं, सुभान अल्लाह, फौरन कहती हैं कि ये नहीं कि मैं चीखे मारूं, मैं किसी लोगों को बुलाऊं, मैं शोर करूं, मैं, देखिए उनका कनेक्शन अल्लाह ताला से कैसा होगा, अल्लाह की यादों में बैठी हुई है, फोकस करके, पर्दे के पीछे सबसे अलग होके, कि यहाँ पे कोई एक लड़का आ गया है, कोई हैंडसम सा लड़का आ गया, और वो कह रही है आऊज़ु बिर्रहमान मिनका, मैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की भी नहीं फरमाया, कहती मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ, रहमान यानी अल्लाह ताला को उसकी सिफते रहमत से याद किया कि अल्लाह तेरी रहमत की मुझे जरूरत है, कि मैं उसकी पनाह में आती हूँ, रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे, अगर तेरे अंदर कोई भी खुदा खौफी है, ये दूसरे को एक याद कराने का तरीका है ना, कि अगर तेरे अंदर खुदा का खौफ है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि अगर खुदा का खौफ है तो ये काम ना करना, तो अगर तू कोई मुत्तकी है ना तो तुम कुछ गलत नहीं करोगे, मैं अल्लाह की पनाह में, रहमान की पनाह में आती हूँ। तो ये तो बात दूर की है कि कोई ऐसे लड़के से बात करती वो, और इससे उनकी पाक दामनी का पता चलता है। और आपको पता है, जैसे कि इस किस्से से आपको पता चलेगा कि दोनों लोग का रद्द है यहाँ पे, एक तो उनका भी रद्द है जो कहते थे कि ईसा इब्नुल्लाह है, और उनका भी रद्द है जो कहते कि हजरत मरियम, अल्लाह ताला माफ करे, कि उनके ऊपर बोहतान लगाते कि इन्होंने कोई मतलब है कि कोई ऐसा काम किया, हराम काम किया, जिससे ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए जो यहूदी थे, तो यहूदियों का भी रद्द है और ईसाइयों के भी अकीदे का रद्द है इसमें। तो वो तो इतनी पाक दामन थी कि एक इंसान को देख के ऐसे, वो आगे से क्या कहती, मैं रहमान की पनाह में आती, लड़कियों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि कोई लड़का अप्रोच करता है उनको, कोई लड़का उनसे बात करना चाहता है, कोई उनकी तरफ आगे बढ़ता है, तो जो पाक दामन लड़की होती है उसके लिए कितनी बड़ी एक एग्जाम्पल है, सुभान अल्लाह। और किसी भी औरत के लिए, सिर्फ आज लड़कियों के मसाइल नहीं है, खवातीन के भी मसाइल हैं, जिन जाहिर है हर औरत के लिए, लड़की है तो उसको कोई लड़का अप्रोच करेगा जो बड़ी उम्र की है, उसको तो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि भाई बड़ी उम्र की औरत को पर्दे की क्या जरूरत है, जो वैसे तो हम वैसे अपने आप को कहते हैं मैं पर्दे की जरूरत है क्योंकि अब तो मेरी एज इतनी हो गई है, लेकिन जिस वक्त वैसे अपने आप को यानी खूबसूरत बनाने का या कपड़े पहनने का, जेवर पहनने का, मेकअप करने का टाइम आता है तो फिर हम कहते हैं हमसे तो जवान ही कोई नहीं है, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे किसी ने आंटी क्यों कह दिया या बाजी क्यों कह दिया। अगर पर्दा करने की बात आती है तो हम कहते हैं हाय हम तो इतने बूढ़े हो गए, अब हमें किसने देखना। उस वक्त हमारा ये अप्रोच है, लेकिन जब अपनी जेबो जीनत करनी है तो फिर हमारी अप्रोच क्या है, मैं इतनी यंग हूं अभी, आपने मुझे ऐसा कहा भी क्यों। तो ये बात फिर उस वक्त नहीं याद आती जिस वक्त हमने पर्दा करने की बात आती, उस वक्त हम बूढ़े बन जाते। तो औरतों के क्या हालात है देखिए आप सर, सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। तो वो किसी ने कहा कि भाई मैं तो इतनी यानी बड़ी उम्र की हो गई, अब मुझे पर्दे की क्या जरूरत है। तो उनको कहा गया कि जैसे एक 20 साल की लड़की को देखने के लिए एक 25 साल का लड़का मौजूद है, इसी तरह एक 60 साल की औरत को देखने के लिए भी कोई 70 साल का आदमी मौजूद है जो बूढ़ा है, जो उधेड़ उम्र है। तो इसलिए हर एज के अंदर औरत की अपनी इज्जत की हिफाजत जरूरी है। और कोई औरत ये भी ना सोचे कि अब तो मैं शादीशुदा हूं ना, अब मुझे किसने क्या। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला माफ करे क्योंकि हम दौरे फितन से गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं कि शादीशुदा औरतों भी फितने में पड़ने का डर है और फिर पड़ती हैं। तो इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत हर एज में ही औरत के लिए जरूरी है। हर एज के अंदर ही ऐसी कोई चांस ना, ऐसा कोई भी इम्कान जहां से हो सकता है उस दरवाजे को खुला ना रहने दे। वहां पे कोई आपको अप्रोच करता है तो उसको वेलकम ना करें, उसको एनकरेज ना करें कि वो आपसे दूसरी दफा बात करे, ठीक है। तो जब उनको एक लड़का नजर आया तो उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा तो तुम क्या करने आए हो यहाँ पे, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम आ कैसे गए यहाँ पे। फौरन उन्होंने क्या कहा है उस उनसे बात नहीं की, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिनका, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ तुझसे अगर तेरे अंदर कोई तकवा है तो। समझ आई बात। अभी तो उसने कहा भी नहीं कि मैं किस इरादे से आया हूं या मैं बुरे इरादे से आया हूं कि अच्छे से आया हूं कि क्या करने आया हूं। लेकिन ये एक मुत्तकी औरत का काम है जो कि हमें समझ नहीं आती, अकल नहीं आती, हम बड़े भी हो जाते हैं और बच्चियों को क्या कहना, उनकी तो वो एक ऐसी उम्र है जिसमें समझ होती ही नहीं है। अच्छी भली औरतों को भी ये समझ नहीं आती कि उनको अगर कोई आदमी टेक्स्ट कर रहा है या कोई ऐसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है तो हम अंदर से हमारे एक अलार्म बजे और हम कहेंगे नो स्टॉप, यहां से आगे नहीं जाना और ये सही नहीं लग रही बात। हम आगे बढ़ के कहते हैं कि हमने नहीं जी, जी, जी ये तो बैड मैनर्स लगती हैं और मुझे तो बात करनी है, और उसने सलाम किया तो मैं वालेकुम सलाम तो कहूंगी ना, वो हाल अहवाल पूछ रहा तो जवाब तो दूंगी और अब उनका भी हाल पूछ लूं भाई, तमीज तो यही है क्यों। तो इससे हमें बहुत लर्न करना चाहिए और आगे आगे आप देखेंगे, और खास तौर पे खवातीन के लिए सूरह मरियम में बहुत लेसन है कैसे हमें इस दौर में चलना है, क्योंकि फितने बहुत ज्यादा हैं, कैसे चलना है अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए वो समझना है हमें। कौला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, कहा उसने मैं तो रसूल हूं तेरे रब की तरफ से, यानी मैं एक रसूल से मतलब क्या कि पैगाम लेकर आया हूं तेरे रब की तरफ से, मैं कोई इंसान ऐसे नहीं हूं, मैं तो कैरियर हूं। ले अहबल की गुलामन जकिया, कि मैं तुझे दूं एक लड़का पाकीजा, यानी अल्लाह ताला की तरफ से, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि जो पहले ही बता दिया कि मैं अल्लाह की तरफ से एक रसूल हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाज ने लिखा जी हम, इसका मतलब है कि जाके हम औलिया अल्लाह से भी मांग सकते हैं क्योंकि जब वो हमें देंगे तो वो भी तो अल्लाह की तरफ से दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई चीज यहां से आप नहीं ले सकते। बाज तफसीरों में जहां पे, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हर तफसीर नहीं पढ़ने बैठ जाए, बाज में ऐसी गुमराही की बातें लिखी होती कि इसका मतलब अब वो भी तो हमें अल्लाह की तरफ से ही दे रहे हैं तो इसलिए अब वो भी हम उनसे भी कह सकते हैं कि आप हमें दे दें, क्योंकि देखें यहाँ पे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये गलत है। तो रब्बी की, तेरे रब की तरफ से, रब फिर जहन में ले आए वो, क्योंकि यहाँ पे औलाद की बात आ रही है ना, रब वो होता है जो केयर करने वाला होता है, जो सस्टेनर है, मेंटेनर है, जो जो इंसान को पालने वाला है, जो उसको हिफाजत करने वाला है, जो उसका मालिक है। तो मैसेज चूंकि बच्चे का देना है ना, इसलिए रब का लफ्ज आया। तो आपके रब की तरफ से मैं आया हूं, उसने मुझे भेजा है कि मैं आपको दूं, ठीक है, देखें जैसे कोई आपके पास चिट्ठी लेकर आए, वो कहे कि मैं फलाने की तरफ से आऊं, ये मैं आपको देता हूं कि मैं आपको ये पहुंचा दूं, यही कहेगा ना, ये बताने के लिए कि भाई उसकी तरफ से ही आया, ये नहीं कि मैं खुद अपनी तरफ से ये चिट्ठी रख के लिख के ले आया। तो ये बहुत फर्क है इसमें, ये नहीं कहना चाहिए कि वो जो हम औलिया अल्लाह की भी कब्रों पे जाके इसी तरह मांगने शुरू कर दें, क्योंकि वो तो नहीं दे रहे, वो तो अल्लाह से ही दिला रहे हैं, तो हम भी कह सकते हैं उनको। और फिर ली अहबा लकी, ठीक है, अहबा मैंने अभी आपको हिबा से बताया है, तोहफा होता है। और ऐसा बच्चा, सिर्फ बच्चा नहीं, सिर्फ लड़का नहीं, जकिया, पाक, पाकीजा बच्चा, प्रॉब्लमेटिक नहीं। बस बच्चे प्रॉब्लम होते हैं पेरेंट्स के लिए, आपने सूरह कहफ में पढ़ लिया है कि उस बच्चे ने कैसा प्रॉब्लमेटिक बनना था पेरेंट्स के लिए, और किसी तरह के भी प्रॉब्लम हो सकते, वो बच्चे फिर इम्तिहान बन जाते हैं। नहीं, ये एक जकिया होगा, इसका बातिन भी पाक। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, हालत अन्ना ये कौनुली गुलाम, अब उनको तसल्ली हो गई कि अच्छा ये अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ते हैं, तो अब बात कर रही हैं। ठीक है, आप देख लें कि पहले नहीं उन्होंने बात की, पहले नहीं, अब अलैक सलैक और हाल अहवाल किया है, अब कन्वर्सेशन शुरू कर रही हैं कि कैसे होगा मेरे लिए बेटा। अब ये नहीं है कि वो भी बिलीव नहीं कर रहे, मगर जैसे मैंने आपको जकरिया अलैहिस्सलाम का बताया कि यानी किस तरह से हो सकता है, यानी इंसान कहता है ना कि कैसे, पता तो है कि हो सकता है, होगा, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो होगा, फरिश्ता आके कह रहा है तो होगा, लेकिन कैसे, इंसान को समझ नहीं आती ना, वो समझना चाहता है कि क्या तरीका कार हो सकता है। वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे तो किसी बशर ने छुआ नहीं। और आप देखें कुराने पाक में ऐसी बातों को हमेशा इशारतन कहा जाता है, जब जब तयम्मुम वुजू की इन आयात के अंदर भी जब आया ना कि भाई जब तुमने अपनी बीवियों से ताल्लुक किया हो तो लामस्तुमुन्निसा आया, तुमने छुआ औरतों को, या जाहदकुमुल गायत के तुम बाथरूम से होके आए हो, तो इन इन तरह की बातों को जो शर्म वाली होती है उनको बहुत ओपनली नहीं कुरान ने कहा। इसी तरह यहाँ पे लम यमससनी बशर का मतलब क्या है कि मेरी शादी नहीं हुई, मुझे किसी, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे छुआ नहीं है, यानी मेरा मतलब है कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं किसी के साथ हुआ, और वो शादी के बाद ही होता है। और वलम अकु बगिया, और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूं कि कोई जिनाकार भी नहीं हूं कि आउट ऑफ वेडलॉक शादी के अलावा कहीं और ताल्लुकात करूं। और यहाँ पे भी देखें अकुन की जगह अकु आया, और पीछे भी आयत 9 में वलम तकु शैया, ठीक है, तो तकुन नहीं वहां पे आया, और यहाँ पे अकुन होना था वो नहीं आया, वहां पे भी नून गिर गया और यहाँ पे भी नून गिर गया। और वजह इसकी क्या है कि वहां पे भी तकुन में नून होता तो वो वर्ड वर्ड बड़ा बन जाता ना, तो तकु आया, नून को गिरा, यानी तुम इतनी मामूली चीज हो कि लम तकु शैआ, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं, जब तुम बिल्कुल कुछ थे ही नहीं, तो नून का गिरना भी बता रहा है कि कितनी हकीर चीज थे। और यहाँ पे बगिया है, अकुन भी नहीं, अकुन असल वर्ड अकुन था कि यानी मैं तो बिल्कुल भी नहीं, जरा बराबर भी नहीं, मैं बदकारी की तरफ जरा बराबर भी नहीं, इस चीज की तरफ मायल, इस चीज की में इन्वॉल्व, तो अकु आया। ठीक है, तो इस टू द माइन्यूट लेवल भी नहीं हो कि मैं कोई लिमिट्स क्रॉस करती, तो जब ऐसा है तो फिर कैसे होगा, यानी एक नेचुरल सा दिमाग के अंदर आती है ना बात, कदालिके इसी तरह होगा, कहा इसी तरह होगा, उस फरिश्ते ने कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और दूसरा इसका माना है कि हाँ जो आप कह रही हैं वैसा ही है, लेकिन काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिनुन, वही वाली बात जो पहले गुजर चुकी है, तेरे रब ने फरमाया कि ये उसके ऊपर बहुत आसान है। देखें जो पैदाइशें दुनिया के अंदर हुई हैं वो 3 तरह की हो चुकी थी, यानी माँ बाप के साथ भी हुई, बगैर बाप के भी हुई, अम्मा हवा सॉरी बगैर माँ बाप के भी हुई, बगैर माँ बाप के साथ तो सारे इंसानों की हुई है, बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम की हुई, और बगैर माँ के हवा अलैहिस्सलाम की, अब बगैर बाप के, ये भी अल्लाह ताला ने दिखाना था कि वो हर तरह से पैदा कर सकता है, उसको असबाब की जरूरत नहीं है, उसका जो कानून है अदल है ना, जो अल्लाह ताला का जो कानून वैसे दुनिया में चलता है वो असबाब के पर्दे में चलता है कि सबब होता है और फिर, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला सबब का मोहताज है। मोहताज से तो इत्तेयाद से तो वो हर तरह की मोहताजी से पाक है, तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वो बगैर माँ बाप के भी पैदा कर सकता है और बगैर बाप के भी पैदा कर सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ था। इससे पहले जो तीन तरह की पैदाइश थी वो हो चुकी थी, ये नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को भी निशानी बनाना था, इसलिए फरमाया वली नजअलहु आयतल लिन्नास, ताकि ये निशानी बन जाए लोगों के लिए कि अल्लाह ताला की कुदरत है, उसको सबब की जरूरत नहीं। व रहमत मिन्ना, और हमारी तरफ से एक रहमत, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत। कैसे कि वो लोग जो मोजा कोई देखना चाहते हो और बस उनको सिर्फ एक जरा सी पुश की जरूरत हो, कि नहीं वो उन कन्विंस हो चुके हैं लेकिन जरा सी पुश चाहिए, कोई मोजा देखना चाहते हैं, उनके लिए रहमत। और जो ईमान वाले हैं उनके लिए भी रहमत, कि उनको और स्ट्रेंथ मिलती है, वो और मजबूत हो जाते हैं, उनके मुखालफों के मुंह बंद हो जाते हैं, कि अल्लाह ताला तो वो है कि जो ये भी मोजा करके दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है। वकाना अमरम मकदिया, और ये काम तो हो के रहने वाला है, ये सारी बात फरिश्ते की है कि हमने इस तरह से करना है क्योंकि ताकि ये लोगों के लिए निशानी बन जाए, रहमत हमारी तरफ से हो जाए। और ये एक काम है जो हो के रहेगा। तो पहले से ईमान लाने वाले हैं ना, जो बगैर मोजा देखे ईमान ला चुके हैं, वो मजबूत हो जाते हैं मोजे और देख के। आपके सामने भी कोई ऐसा मोजा आ जाता है, कोई ऐसी चीज, हर की आदत सुपर नेचुरल कोई चीज हो जाती है। वैसे तो लोग इतनी बेकार चीजों को भी ना फेक वीडियोस बना बना के दिखाते रहते हैं ताकि लोग इम्प्रेस हो जाएं। देखो जी कैसे चांद निकल रहा है, कितना बड़ा जमीन के करीब आ गया। देखो जी कहीं क्लाउड्स के अंदर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। देखो जी आलू काटा है तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वैसे कोई सुपर नेचुरल कोई चीज सामने आती तो इंसान एकदम उसका ईमान और मजबूत हो जाता है। ये रहमत है आपके ऊपर अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला ऐसी कोई चीज दिखा दे। और ये अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है जो अब हो के रहना, ये डिसाइड हो चुका है अल्लाह ताला की तरफ से। फहमलत हो, तो उठा लिया उसको। फाक से पता चलता है कि उसी वक्त उनका हमल ठहर गया, और हमें दूसरी जगह से पता चलता है कि फरिश्ते ने फूंक मारी और उनको हमल ठहर गया। अब वो हमल कितनी देर का था, क्या 9 महीने लगे थे, क्या उसी वक्त हो गया, क्या गया, ये हमें नहीं कुछ पता चलता। फम तबादत बिही मकानन कसिया, ये हमें पता चलता है कि फिर उसके बाद वो अलग हो गई इसके साथ किसी दूर की जगह। अब जाहिर है दूर की जगह इसलिए कि जब वो डिलीवरी का टाइम आया है तो इससे पहले तो कितना वक्त गुजरा है वल्लाह आलम, मगर उस तक तो वो छुपा सकती है, लेकिन अब डिलीवरी होनी है तो वो कैसे इस वक्त फिर यहाँ पे रह सकती है। तो वो दूर की किसी जगह पे चली गई। कहा जाता है कि वीराना एक था जिसको बैतुल्लहम कहते हैं, बैथलहम इंग्लिश में कहते हैं, आज भी ईसाई उस तरफ को नमाज पढ़ते हैं और उसको अपना किबला समझते हैं क्योंकि वहां पे ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हुई थी। तो उस जगह पे चली गई, यानी वीराने में चली गई, अलग हो गई लोगों से। अब आप खुद सोचें ये जरा बात, कि ऐसा वक्त जिसमें एक औरत को सबसे ज्यादा अपने घर वालों की जरूरत होती है और सपोर्ट की जरूरत होती है, एक तकलीफ भी होती है और एक पहली दफा जो माँ बन रही होती है उसके लिए एक बिल्कुल एक नया तजुर्बा भी होता है। ऐसी हालत में हजरत मरियम एक जवान लड़की है और उनके साथ ये वक्त आया है, और कैसे हिम्मत से उठती हैं और जाती हैं, ये उन सब लोगों के लिए एक हौसला है। जो ये हम बहुत ज्यादा ये कहते हैं ना, हाय मैं तो अकेली हूं यहाँ पे, मेरे पेरेंट्स करीब नहीं, बहन भाई करीब नहीं, मेरा यहाँ पे कोई नहीं, तो उस वक्त हजरत मरियम को याद कर लिया करें कि जो इतने मुश्किल वक्त में, नॉट ओनली कि ये एक उनके लिए डिलीवरी का टाइम था, ये कोई नॉर्मल आम हालात की डिलीवरी नहीं थी। क्योंकि हम देखते हैं, आगे देखें फिर आपको पता चलेगा, फअजाअहा अलमखौदु इला जिज इन नखला, तो ले आई उसको वो जो कॉन्ट्रैक्शंस थी वो उसको ले आई खजूर के तने की तरफ। अरे जब जो भी माएं सुन रही हैं सबको पता है कि जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो क्या हालत होती है इंसान की, उस वक्त खजूर का तना पकड़ के खड़ी हो गई। जाहिर है इंसान कोई सहारा कोई चीज हो जिसको पकड़ लूं, कहीं खड़ी हो जाऊं, कहीं कुछ चीज को थाम लूं, तो इंसान उस वक्त इतनी होती, कोई दीवार भी होती है ना, बंदा उसके साथ ही लग के खड़ा हो जाता है, सार फेंक लेता है जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन आती है। तो कालत या लैतनी मित्तु कबल हादा, तो आगे से डेस्परेशन में बोलती हैं, हाय काश मैं मर ही चुकी होती इससे पहले और भूली बिसरी दास्तान बन जाती। क्यों ऐसे कहती है? इसलिए कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, ये बगैर शादी की है। अब खुद को तो यकीन है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन किस किस को बताएंगी? आप देखे ना, आप खास तौर पे, ये तो एक किसी भी औरत के लिए इतनी बड़ी चीज है, लेकिन खास तौर पे एक ऐसी औरत जो एक नेक सीरत औरत है, जिसका घराना इतना नेक सीरत है, जो कि इतने नेकों की औलाद है, उनके आगे ऐसी चीज का आ जाना। आप इससे याद कर लें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को, कि जिस वक्त उनके ऊपर तोहमत लगी थी तो क्या हाल हो गया था उनका। रो रो के कहती हैं कि मैं रो रो के हलकान हो गई थी और दिन और रात रोती रहती थी। तो इनका भी खानदान, इनका अपना कैरेक्टर, इनके इर्द गिर्द के सारे रिश्तेदार, अब उनके खालू एक अल्लाह के पैगंबर है, और ये दीनी घराने से ताल्लुक रखती हैं, दीनदार लोग जो कहलाते हैं, तो लोग क्या बातें करेंगे खानदान के बारे में और दीन के बारे में कितनी बातें करेंगे? इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जो दीन वाला होता है, उसके साथ दीन जुड़ा होता है और वो एक दीन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका कोई गलत काम करना, उससे को गलती हो जाना, उसके ऊपर लोग दीन को बदनाम करते हैं। देखो जी, ये बड़े दीन वाले, ये बड़े ऐसे बनते हैं। वो ये नहीं कह सकता, मेरी प्राइवेट लाइफ है जी, मैं जो मर्जी करूं। आप सोचें, आप कुरान पढ़ते हैं ना, लोग आपको एक और नजर से देखने लगते हैं, आपके साथ कुरान का नाम जुड़ जाता है। अब आप उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, चीप हरकतें करना शुरू कर दें, ऐसी हरकतें करें जो आपकी डिग्निटी की नहीं है, मतलब ऑनरेबल नहीं समझी जाती। बच्ची बन के घूम रही हैं या ऐसी हरकतें कर रही हैं जो कि बिल्कुल डिसेंट नहीं है, तो सोचें उस पे भी लोग कितनी बातें करने लगते हैं कि देखो ये कैसी है, बड़ी दीन पड़ी हुई है। उस वक्त इंसान को समझना चाहिए कि मेरे साथ दीन का नाम जुड़ा हुआ है, मैं इसकी रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं हिजाब लेती हूँ, लोग मुझे इससे पहचानते हैं। फिर क्या होता है, लोग कहते हैं हाँ जी हिजाब वालियों को तो देख लो, वो तो ऐसी होती है, मुसलमानों को तो देख लो, वो तो ऐसी होती है। तो आप जब भी कहीं जाते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे ये समझना चाहिए हमें कि एक इज्जत है इस काफ की भी, इस हिजाब की, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं जो कुरान पढ़ती हूँ उससे भी मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं जिस दीन से ताल्लुक रखती हूँ मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ लोगों में, लोग मुझे उसके जरिए पहचानते हैं, दीन वाले, हिजाब वाले, कुरान वाले, क्लासों वाले, कहते हैं ना। अब मैं जो हरकतें कर रही हूं, क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोग उंगली उठाएं इस चीज के ऊपर जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं? हम भूल ही जाते हैं। तो वो इस चीज से परेशान थी कि ये नहीं कि अब मेरा क्या बनेगा या अब क्या होगा, मेरे दर्द बहुत हो रही है, नहीं, ये आसान बात नहीं थी कि इस चीज को वो डिफेंड करें, कैसे डिफेंड करेंगी? ठीक है, तो एक हालत ऐसी, और ऊपर से उनके साथ मामला बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा हमें ये सबक मिलता है। तो वो कहती है इससे पहले तो मैं मर ही जाती, और ये नहीं है कि मौत की दुआ करना जायज हो, ये नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया, और फरमाया है कि अगर किसी ने दुआ करनी भी हो तो वो ये कहे कि अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर है तो तब तक मुझे जिंदगी दे, वरना मुझे मौत दे देना जब मेरे लिए मौत बेहतर हो, अगर दुआ करनी भी हो तो। लेकिन फितनों से बचने के लिए इंसान को, जहां पे फितने का डर हो तो वहां पे मौत की दुआ भी जायज हो जाती है। तो कहती हैं काश मैं भूली बिसरी दास्तान बन जाती, क्योंकि अब लोगों को कैसे बताऊंगी, कैसे उनको यकीन दिलाऊंगी, कौन यकीन करेगा? आप खुद बताए ना, ऐसा तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं था, तो कौन यकीन करेगा? और ये यंग सी लड़की है, बहुत आसान है, तुहमत लगा देना, फनादाहा मिन तहतीहा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फिर अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जिस रब ने, जो रब कोई मुश्किल डालता है ना, जब कोई जिम्मेदारी, कोई आजमाइश अल्लाह ताला डालता है ना, तो फिर जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला होता है तो अल्लाह ताला भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, याद रखें कभी। और इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। इंसान को नजर नहीं आती वो आसानी, वो कहता लो इससे क्या फर्क पड़ा, मेरी मुश्किल तो बहुत बड़ी है, अगर ये आसानी भी आ गई तो क्या फर्क पड़ा, ये तो इतनी छोटी है, मुश्किल मेरी ज्यादा बड़ी है। नहीं, तो अल्लाह ने साथ आसानी भी तो भेजी ना। अल उसरी युसरा, बहुत जो जो ग्रामर समझते हैं ना उनको समझ आएगी। इन्ना माल उसरी युसरा, युसरा नकेरा है, और उसर जो है वो मारफा है, वो तो एक ही मुश्किल है, और युसरा बहुत सारी आसानियां। फनादा मिन तहतिया अल्लाह तहजनी। अच्छा, वो नीचे से आवाज आई, नीचे से क्यों आई, सामने से क्यों क्यों नहीं आके बोल रहा, प्राइवेसी देने के लिए। इसलिए क्योंकि देखें, एक ऐसा भी वक्त होता है ना जिसमें अब इंसान का दिल नहीं चाहता है कोई भी मेरे सामने आए, मुझे इस हालत में देखे, तो वो अपने लिए प्राइवेसी चाहती थी, चाहती थी इस वक्त नहीं। चाहे वो फरिश्ता ही है, इंसान नहीं है, लेकिन एक हया वाली लड़की है, तो सामने नहीं, कोई ऐसी जगह से कोई बोला, नीचे से कोई आवाज आई, क्या क्या आवाज आई होगी आपसे, इतनी नेक हो और देखो जरा कैसी बातें कर रही हो तुम, ये तुम्हें जेब देता है कि तुम ऐसी बातें करो। नहीं, अल्लाह तासानी कि ना तुम गम करो। देखें जी, इससे पता चलता है कि देखिए, जैसे हम आयशा रजी अल्लाह ताला को भी देखते हैं, इनको भी यहाँ पे देखते हैं, तो इंसान के डाउन मोमेंट्स भी होते हैं जिसमें वो ओवरवेल्म हो जाता है और उसको तसल्ली की जरूरत होती है कि कोई उससे बात करे। उस वक्त उसको यही कहना चाहिए कि आप गम ना करें, अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं अकेला, आप फिक्र ना करें इसकी। ना कि ये कहना लो तुम कैसी लड़की हो, तुम तो बड़ी नेक बनती थी, तुम देखो तो सही तुम किनकी औलाद हो, तुमने क्या सीखा है अभी तक, इतना पढ़ रही थी वहां पे बैठी भी हो, तुम्हें ये नहीं समझ आई और तुम ऐसी बातें कर रही हो। नहीं, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नहीं, मैं कहती हूँ कि एक-एक आयत के अंदर हमारे लिए लेसन है। एक-एक आयत, जब कोई परेशान है, जब कोई इतना मजबूर हो गया, जब कोई अपनी उसके अंदर, यानी देखिए आप इतनी इंतहा पे आ गई कि वो कह रही है कि अल्लाह इससे तो बेहतर था कि मैं मर ही जाती, इतनी बदनामी, इतनी बड़ा धब्बा मेरे ऊपर लग जाना कि कोई कहेगा कि ये जिनाकार थी, नाउज़ु बिल्ला। एक कमारी लड़की बच्चा लेकर आ जाएगी तो उसके ऊपर क्या होगा, मैं किस किस को समझाऊंगी, इससे बेहतर था वह भूली बिसरी दास्तान होती, उसके आगे कोई आगे उसको ये कहने वाला हो जाए तुम क्या ये तुम क्या वो। अब ऐसी हालत के अंदर हमारे यहाँ जो मिडवाइफ या नर्सेस होती हैं वो किस तरह का सलूक करती हैं औरतों के साथ, जब वो कोई औरत करा रही है या कोई औरत बेचारी बिल्कुल तकलीफ के अंदर है आम हालात में, तो उसको कैसी डांट पड़ती है, कैसे उससे बात होती है, खुद सोचें, वो हमदर्दी के अल्फाज तो नहीं होते कोई। तो ऐसे वक्त में जब कोई ऐसी हालत में हो ना अपने डाउन टाइम में, तो आगे बढ़ के उसको तसल्ली देनी चाहिए, ना कि उसको ताने देने चाहिए कि तुम तो क्या, तुम ये तुम वो, समझाए। कद जाला रब्बू की तहत की सरिया, और तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक चश्मा बहा दिया है, तुम्हारे लिए एक चश्मा निकाल दिया है। कहा जाता है कि इनके पाओं के करीब ही एक चश्मा निकल आया, या शायद पहले से था, अल्लाह ताला ने निकाल दिया। ये अल्लाह ताला की युसर है उनके लिए, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आ गई उनके कि पानी पी ले। अब इंसान उस वक्त की कितनी एक इमोशनल, इमोशनली भी उसके ऊपर, फिजिकली भी उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त है, तकलीफ तो तकलीफ है, जो सारे लोग इससे गुजरते हैं उनको पता है कि कितनी तकलीफ होती है। इंसान कहता है कि मेरे कोई प्यारे करीब हो या मेरे कोई देखने वाला हो इस वक्त मुझे, एक जगह से और पता चलता है कि ये किसी ऊंची जगह पे थी, तो नीचे से फरिश्ते ने ये कहा, और ये भी कि इनको यहां से एक चश्मा बह गया। जब हमें ये भी पता चलता है ना कि इन ताहती हाथ से पता चलता है कि जब किसी को ना अलोन टाइम चाहिए हो ना, तो उसको देना चाहिए, लेट देम हील। जब कभी लोग कहते हैं किसी के फौत हो जाता है तो वो कहते हैं कि अभी हमें प्राइवेसी चाहिए, प्लीज कोई हमारे घर ना आए, तो आप ये उनको टाइम दें। उस वक्त ना ये कहें कि नहीं ये क्या बात हुई, ये क्या, यहाँ किसी का घर है तो उसको प्राइवेसी दे। कोई नहीं चाहता कि आप उसके घर इस टाइम पे पहुंचे, तो नहीं पहुंचे। तो दिलासा देने के लिए भी अल्लाह ताला ने किसी को भेज दिया और पानी का इंतजाम भी कर दिया। वहुजी इलई की भी जिज इन नखलती, और हिलाओ इस दरख्त के तने को। अब दरख्त के पास खड़ी हुई थी तो कहा हिलाओ इसके तने को। उन्होंने उसके साथ अपने टेक लगाई थी ना, उसके साथ सरक के खड़ी हुई थी जिस वक्त हम पहले पढ़ रहे हैं आयत 23 में, तो उसी को अब हिलाओ। इनके हिलाने से क्या होना है कि एक औरत जो बेचारी बुढ़ी तकलीफ में है तो वो क्या हिला के कर सकती है। लेकिन उनको कहा गया नहीं तुम हिलाओ, क्यों? तो साथ ताले की रोता बन जनिया, तुम्हारे पर पकी हुई खजूरें फ्रेश गिरेंगी तुम्हारे पर, ये इस गिराएगा ये दरख्त तुम्हारे ऊपर ऐसी खजूरें, नखला गिराएगा, गिरती जाएंगी तुम्हारे ऊपर। तो अल्लाह ताला तो इसके बगैर भी गिरा सकता था, इनके हिलाने की क्या जरूरत थी। अल्लाह ताला ने सिखाना था कि तुम सबब इख्तियार करो। जो लोग कहते हैं ना बस हाँ अब अल्लाह ने ही डाला है अब वो ही करेगा, मैं तो खुद उठ के कोई कोशिश करूंगी ही नहीं, नहीं सबब आप जरूर इख्तियार करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें। सुस्ती, और ये इस चीज को कहना कि भाई सुस्ती, अपनी सुस्ती को ये नाम देना हम तो तवक्कल बहुत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। वो आपकी सुस्ती है कि आप उठ क्यों नहीं रहे। तो हिम्मत दिलाने का मैसेज है कि हिम्मत करे इंसान, उस वक्त में भी हिम्मत दिलाई को आपने ये हिलाना है, चाहे उनसे कुछ भी ना हिलाओ लेकिन अल्लाह ताला ने खजूरें गिरा दी। गिरानी तो अल्लाह ने थी ना, इनको बस सिखाना था कि अल्लाह बेसबब भी पैदा कर सकता है ईसा अलैहि सलाम को, और सबब का भी तुम्हें इख्तियार करने को हुक्म देता है। तो इससे पता चलता है हमें अपनी जिंदगी में कोशिश मेहनत सबब इख्तियार करना, ये मैसेज है हमें। तो हाथ पे हाथ धर के बैठना ये उम्मत मुस्लिमा का ये तरीका नहीं सिखाया गया। फकुली वशरबी वकरी आईना, तो खाओ और पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। तो ये खजूर को भी कहा गया कि ये इस वक्त एक औरत के लिए बहुत अच्छी गिजा है जब उसकी डिलीवरी हो कि वो खजूर खाए, ठीक है, उसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशंस हैं कि जो कि उसको ताकत देंगे। खजूर वैसे भी बहुत अच्छा फल है लेकिन इस टाइम के लिए औरत को ये देना चाहिए खाने के लिए। और पानी पियो और वकर आईना, और ठंडी कर अपनी आंखें, क्योंकि वो बच्चा पैदा हो गया, इससे अपनी आंखों को ठंडा करो। यानी तुम बस रिलैक्स करो, आराम करो, कोई कोई फिक्र ना करो आगे। फिक्र किसकी थी कि कोई पूछेगा तो क्या होगा, क्या करूंगी इस बच्चे का, तो उसका हल बता दिया। फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी आदम, अगर आप देखोगे किसी भी बशर को, किसी एक इंसान को भी देखो, फकूली तो उसको कह देना इन्नी नजरतु लिर्रहमानी सौमा, मैंने रहमान के नाम पर नजर मानी हुई है रोजे की। तो फलन उकल्लिमा यौमा इंसिया, मैं आज के दिन किसी इंसान से कोई बात ही नहीं कर सकती। उनके यहाँ कहते हैं कि एक चुप का रोजा भी होता था, वैसे भी इंसान को जो अपने तस्किए के लिए और गौर फिक्र के लिए पसंदीदा है कि इंसान खामोशी इख्तियार करे, लेकिन हमें चुप के रोजे का नहीं कहा गया, हमें वैसे खामोशी का कहा गया कि खामोश रहने से जो इंसान सीखता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो उसको वक्त मिलता है गौर फिक्र का, वो बोलने बोलने हर वक्त बातें करने के बहुत शौकीन रहना ये कोई अच्छी आदत नहीं है। खामोशी में खैर है और बहुत बोलने के अंदर इंसान कुछ ना कुछ फिर उल्टा सीधा बोल ही देगा। जाहिर है जब बोलता ही जाएगा, जिसको बोलने का शौक होगा, मैंने किसी को कॉल कर दिया, लोग उनके फोन उठाने से डरते हैं कि इनका फोन उठा लिया तो बस 1-2 घंटे तो हमारे गए बस ऐसे। इस तरह के शौकीन नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट आप बात करके बंद कर दे, या लोगों से भी बातें करने लगे तो बस ये नहीं कि दूसरे बेचारे को तो बात करने का मौका ही ना देना, बस एक दफा शुरू है तो बस खत्म ही नहीं होना, तो ये नहीं पसंदीदा चीज है। खामोशी में बहुत सारी खैर है, अगर कभी कहेंगे तो इसके ऊपर आपको बताऊंगी। लेकिन कलाम करने में ना, कलाम या तो खैर का हो, या अफसर सरम ने फरमाया कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता है उसको चाहिए कि या तो खैर की बात करे या खामोश रहे, खैर की बात करें या खामोश रहे। जरूरी नहीं होता कि हमने हर टाइम अपनी जुबान को बिजी रखना। तो उनके हाँ, तो इस तजकिया की खातिर ना, तजकिया की खातिर अपने आप को प्योर करने के लिए रोजा होता था। तो हमें रोजा नहीं रखने के, हमें तरगीब दी गई वैसे ही कि आप खामोश रहे। तो कि भाई मैं तो रोजा रखे हुए, तो मैं नहीं कुछ बोल सकती। यानी अब जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है, वो खुद ही इस चीज को निपटेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बस खाएं पिएं, आप अपनी आंखें ठंडी करें। और पता है औलाद के लिए कुर्रतु तो आयुन ने भी कहा गया ना कि अल्लाह इनको मेरी आंखों की ठंडक बनाना। तो औलाद से वाकई इंसान की आंखें ठंडी होती हैं। जब बचपन में होते हैं तब भी आंखें ठंडी होती हैं, उनको खेलते कूदते देख के। बड़े होते हैं तो उनकी नेकी देख के आंखें ठंडी होती हैं। फअतत भी कौमहा तहमिलो, तो वो ले आई उसको अपनी कौम के पास। अब कितनी देर वहां पे रहना था, जाहिर है फिर लेकर आई जब उनको उठा के गोद में। कालू, उन्होंने तो कोई बात पूछी नहीं अगली कि भई ये बच्चा कहाँ से आया, किसका बच्चा है, क्या है। उन्होंने तो सीधा कहा, या मरियम लकद जीती शई अनफरिया, तूने तो बहुत ही कोई बुरी बात कर ली है, कितनी बुरी हरकत तूने की है। या उख्ता हारून, है हारून की बहन। माँ का ना अबू की सऊ इन व माँ का ना उम्मू की बगिया, तेरा तो बाप भी ऐसा नहीं था, तेरी तो माँ भी ऐसी नहीं थी। देखिये उख्ता हारून क्यों कहा गया। बाज कहते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम की ये नस्ल में से थी तो इसलिए कह दिया गया। बाज कहते हैं कि नहीं, इनके खानदान के अंदर कोई एक बड़ा नेक आदमी था, उसका नाम हारून था, तो उनसे कहा गया। जैसे कि आपको कह देना कि आप फलां खानदान के, खानदान का कोई बड़ा नाम होता है, कोई एक बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके उनकी बहन, तो यानी उस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है, यानी बड़े नेक खानदान से। और तुम्हारा तो बाप भी कोई बुरा आदमी नहीं था, तुम्हारी माँ भी कोई बदकार औरत नहीं थी, तुमने ये काम कर दी। आप इससे अंदाजा करें कि जब इंसान, यहाँ पे तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन वैसे जब भी इंसान कोई गलत काम करता है ना, वो गलत काम उस तक नहीं रहता, उसके पिछले तक को लोग उधेड़ के रख देते हैं, उसके माँ बाप तक बदनाम हो जाते हैं। इसलिए इंसान कोशिश करे कि वो स्ट्रेट रहे जिंदगी में, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं होती, उसके साथ उसके माँ बाप की इज्जत भी जुड़ी होती है। देखिए इसीलिए तो बाज औरतों ये होती है, वो कहती हैं कि भाई मेरे तक बात करो, मेरे माँ बाप तक क्यों पहुंच गए। वो माँ बाप तक पहुंच जाते हैं जिस वक्त के कोई किसी औरत से नाला होता है, कई ससुराल वाले सुना देते हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं बताया। किसी बच्चे को आप उल्टी हरकत करते देख लें तो आप कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने नहीं तुम्हें सिखाया, कहते ना। तो वो माँ बाप बेचारे जो होते हैं, वो तो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं जब कोई औलाद गलत काम करती है। तो औलाद को सोचना चाहिए कि अगर मैं बदजुबानी करूंगी ससुराल में शोहर के साथ, तो मैं अपने माँ बाप के लिए भी देखे, बेचारे माँ बाप का तो कसूर नहीं। लेकिन वो हमेशा से ये चलता आ रहा है कि माँ बाप की बात बीच में आ ही जाती है। अब देखें यहाँ पे कितने पुराने जमाने की बात, लेकिन माँ बाप के ऊपर बात गई। तो हम सोचें कि हम कैरियर होते हैं अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, हम कहीं पे कोई गलत हरकतें करेंगे, हमारे माँ बाप चाहे जिंदा है चाहे नहीं। अब उनके माँ बाप तो फौत हो गए थे, आई मीन बाप तो फौत हो गए थे, माँ का मुझे नहीं पता, लेकिन माँ बाप चाहे नहीं भी हो दुनिया में, फिर भी बेचारों को भुगतना पड़ता है। औलाद नेक काम करती है तब भी माँ बाप को क्रेडिट जाता है, और औलाद जरा सा भी कहीं गलत काम करे तो माँ बाप भी बदनाम होते हैं। इसलिए अगर हमें अपने वालदेन से मोहब्बत है ना, तो हम कोई ऐसा काम ना किया करें जिससे हमारे माँ बाप के ऊपर हर्फ आए, उनकी इज्जत भी खराब हो। तो वो उनके बाप का भी और माँ की भी बात आई। अच्छा, अब इंसान ना अपने ऊपर बात बर्दाश्त कर लेता, कहता माँ बाप की बात ना करो। अब जो ही माँ बाप की बात आई, वो तो बेकसूर थी, आगे से कह सकती थी मेरे माँ बाप के ऊपर क्यों जाते, मेरे से बात करो, मेरा मैं ये बच्चा लेकर आई, आप मेरे माँ बाप की बात क्यों कर रहे। लेकिन जब उनको कह दिया गया था ना कि आपने कुछ नहीं बोलना, आपने बस कहना है कि मतलब कि मैं रोजे से हूं, यानी आप चुप का रोजा रखा हुआ है आपने, अब आपने कोई बात नहीं करनी। तो वो ऐसे नहीं, अब हमें कितना मर्जी खामोश कराने का कह दें, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो फिर सारी बातें ही भूल जाती हैं कि मुझे चुप करने का कहा गया था, मैंने आज क्लास में पढ़ा था कि मुझे खामोश रहना है, कोई आगे से ऐसी बात करे भी तो मुझे फ्लेयर अप नहीं होना। उस वक्त कहते हैं दूसरे ने बात ही ऐसी की थी, मैं चुप कैसे रह सकती थी। यहाँ पे देखिए उनका सेल्फ कंट्रोल कितना था, उनके अंदर सबर कितना था, आगे से कोई जवाब नहीं देती है, फटनी पड़ती है, मेरे नेक माँ बाप को क्यों ले आए बीच में, बल्कि क्या करती है, इशारत ही ले, तो उसकी तरफ इशारा करती है, बस खामोश है। कितनी अल्लाह ताला की इताअत गुजार है। जब एक दफा बात कह दी गई तो मानना, उसको ओबे किया, वरना हम ऐसे इमोशनल हालात में हम तो शायद कोई भी बात हो तो हम कहते हैं बस मुझे भूल गई थी, मुझे नहीं याद रही थी कि ये बात। कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, उन्होंने कहा ये कैसे बात करेगा, हमें मजाक समझा हुआ, ये बच्चा बात करेगा हमारे साथ जो कि खुद गोद के अंदर है। काला फिर उस वक्त, ये भी ईसा अलैहि सलाम का मौजा देखें, काफी बच्चे बोले हैं माँ की गोद के अंदर, उनमें एक ईसा अलैहि सलाम, एक जुरेज के वक्त में जो बच्चा था वो बोला। कहा जाता है कि फिरौन की जो बेटी की लौंडी थी उसका बच्चा बोला। तो इन्नी अब्दुल्ला, पहले उनसे अल्लाह ताला ने कहलवाया, जाते क्यों नहीं बोल दिया ईसा अलैहि सलाम, क्योंकि वरना फिर वो मोजा एक बात नहीं रहनी थी ना, वो उनसे ये बात कहलवाई कि ये कैसे बोलेगा, यानी बोल ही नहीं सकता। तब मोजा आया कि मैं अब्दुल्ला हूं, मैं अल्लाह का बंदा। उन्होंने ये नहीं कहा मैं इब्नुल्ला, फौरन रद्द हो गया इस बात का कि जो पैदा होते ही पहली बात क्या कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का गुलाम, उनको तुमने खुदा का बेटा बना दिया। आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मुझे किताब दी गई, अब ये पास्ट में बात हो रही है, माजी में बात हो रही है, और मुझे बना दिया गया नबी, तो इस वक्त तो नहीं किताब दी गई, अभी तो वो पैदा ही हुआ है, इसलिए कि माजी का सीगा इस्तेमाल करके मुस्तकबिल की बात जब की जाए तो हम देखते हैं ना कयामत के जिक्र में भी ऐसा ही होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि कंफर्म है बात, ये जरूर ऐसे ही होके रहेगा कि मुझे किताब भी दी जाएगी, वो इंजील तौरात तो पहले ही थी, और मुझे नबी भी मनाया जाएगा, लेकिन ये इतनी कंफर्म है जैसे हो चुकी बात। वह जालनी मुबारकन अइनमा कुंतु, और मुझे मुबारक बनाया गया है मैं जहां कहीं हूं। बरकत क्या होती है? खैर कसीर, वो खैर जो बढ़ती ही जाए, वो खैर जो कंटिन्यूस होती है, एवरलास्टिंग होती है, खत्म नहीं होने वाली होती, वो उस खैर को कहते हैं उस खैर कसीर को कहते हैं बरकत। और देखें वो ऐसे बरकत वाले थे कि फरमाया अहीना मां कुंतु, मैं जहां कहीं हूं। इससे ये भी पता चलता है, ये बड़ा यानी लफ्ज इन अल्फाज में बड़ी हिकमत है, अहीना मां कुंतु, यानी जब वो दोबारा भी आएंगे तो उनके साथ बरकत लगी होगी। ठीक है, अभी तो थे, जहां कहीं भी हूं, जब कभी भी हूं, आप इससे कर लें माना। वह अवसानी बिस्सलाती वज़्ज़कती, और मुझे वसीयत की गई है नमाज की भी और जक़ात की भी। नमाज की वसीयत, सोचें कि पिछली शरीयतों में भी वसीयत से मतलब होता ताकीदी हुक्म, बहुत बहुत जिसकी बहुत स्ट्रॉन्गली जिसको जिसको जिसके बारे में ताकीद की गई हो, नमाज की भी अभी पैदा हुए हैं और नमाज और जक़ात की बात कर रहे हैं, तो सोचें हमें भी तो नमाज का कितना हुक्म दिया गया कि नमाज और ज़कात की कितनी दफा हमें बात की गई, कितनी दफा इस चीज की हमें रिमाइंडर किया गया, फिर भी हमें ये बात नहीं याद रहती और नमाज छोड़ने वाले हम बन जाते हैं, नमाज को लाइट लेते हैं हम। हालांकि आप इनको देखें, पैदा होते ही ये फरमा रहे हैं, और हमें भी कहा गया कि यहाँ पे भी उन्होंने भी कहा माँ दुम तो हया, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे नमाज पढ़ने का और जकात का हुक्म दिया गया। इसका मतलब है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, नमाज क्योंकि हमारी शरीयत में भी यही है, नमाज जब तक हम जिंदा हैं हमें नमाज पढ़नी है, अनलेस कि आप बेहोश हो जाएं, अनलेस के कोई बच्चा है, अनलेस के कोई दीवाना है, उसको नमाज जाहिर है उस तरह से उसके ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन जो बेहोश भी है जब होश में आएगा तो पढ़ेगा, लेकिन जब होश में है चाहे अस्पताल में क्यों ना पढ़े। बाज लोग कहते नहीं जी, इस वक्त हमें वजू करना मुश्किल है, आप लोग जो जो उनकी तीमारदारी इयादत करने के लिए मौजूद होते हैं तो मेक श्योर करा करें कि उसको बेचारे को अगर नहीं भी याद, वो अपनी बीमारी के अंदर है, तो आप ही आगे बढ़ के उसको बिस्तर के ऊपर ही वजू करा दें, उसको बताएं कि नमाज कितनी जरूरी है, हमें उस वक्त खुद नहीं याद होता, कब दूसरे की भी नमाज की फिक्र करें, जब तक इंसान जिंदा है उसको नमाज पढ़नी है, चाहे वो बीमारी क्यों ना, तो बैठ के पढ़ लें, और अगर बहुत ही है तो लेट के ही पढ़ लें इशारे से, लेकिन ये माफ नहीं है कि अगर अस्पताल में कोई है तो जी वो उसको नमाज नहीं पढ़नी। और फिर जकात, जकात से एक मतलब तो जो जकात का है कि माल में से निकालना हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका करना, जकात देना, वो तो आप सब समझते हैं। यानी उनके यहाँ भी जकात का जिक्र था। वो लोग तो अब नमाज भी भूल चुके हैं, जकात भी भूल चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ भी फर्ज थी। और दूसरा जकात का है, मैंने आपको जैसे बताया, अंदरूनी तजकिया, पाकीजगी, दिल को साफ रखना, पाकीजा रखना, ये भी है। तो नमाज के साथ इसको रिलेट किया जाए तो नमाज में खुशू, अपने तजकिया करते रहना, इसका हुक्म है। जब तक मैं जिंदा हूं, आखिरी यानी आखिरी लम्हे तक। और आपको पता है कि अभी तो इनको मौत नहीं आई, जब मौत आएगी तब तक, दुनिया में आएंगे तब भी यही करेंगे, नमाज भी और ज़कात भी। एक बात ये इनकी बरकत के बारे में कि देखें, वो तो मुबारक थे, अल्लाह ताला ने उनको बरकत वाला बनाया था, यानी उनसे खैर ही खैर फूटती थी, जहां जाते थे खैर ही लेकर जाते थे, खैर के रिप्रेजेंटेटिव थे, हर एक के लिए खैर का बाइस बनते थे। हम अपने आप को देखें, क्या हम लोगों के लिए बाबरकत शख्सियत हैं या नहीं, हम के लोगों के लिए खैर वाले हैं या नहीं, या क्या हम ये देखते हैं कि पहले इससे मुझे कोई खैर मिलनी है तो फिर मैं इसके लिए खैर वाली बनूं, लोगों के काम आने वाली बनूं, वरना तो मुझे क्या जरूरत है, अच्छा मुझे इससे क्या मिलेगा, ये मेरा क्या काम करके देगी, या मुझे इससे क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, तब पहले ये चेक करूं, उसके बाद मैं उसके लिए कोई खैर का काम करूं, ये नहीं होना चाहिए। जहां पे भी हैं आप लोगों के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे अपने घरों में हैं, रिश्तेदारों में हैं, दोस्तों में हैं, बास लोग इतने खैर वाले होते हैं, सुभान अल्लाह, जिधर जाते हैं मैं तो हैरान होती हूँ, अल्लाह ये कितने प्यारे लोग हैं कि जिधर जाएंगे उनसे खैर ही फैलेगी, जुबान से भी खैर ही निकलेगी लोगों के लिए, ना ताने, ना गालियां, ना चुगलियां, ना गीबतें, ना बुरा भला कहना किसी को, ना उनको, ना कोई ऐसी बात जो हर्टिंग हो, खैर ही खैर। अमल भी करते हैं तो लोगों के लिए खैर ही खैर, बस उनका ये होता है किसी के काम आ जाए, बस हम किसी को भी फायदा पहुंचा दे, हम हैरान होती है कि देखें जिधर जाएं भलाई का पैगाम लेकर जा रहे, जिधर जाएं उधर अपनी, ऐसे लगता है ये लोग जैसे रोशनी है, जिधर जाते हैं उधर रोशनी फैला देते, तो हम किसी को फायदा पहुंचाते हैं अपनी जात से कि नहीं, क्या हमारी भी जात ऐसी है कि नहीं, उठते बैठते चलते फिरते, या बस कि मैं अपने आप को बचा लूंगी, ये मुझे क्या देती है, इसलिए तो मेरे काम नहीं आई थी, अब मुझे क्या, खुद ही देखते रहेगी, ये हमारा रवैया होता है, मुझे क्या, मैं क्या करूं, होती बीमार होती रहे, सर में दर्द है तो होता रहे, पड़ी रहे यहाँ पे, ये ऐसे करते हैं, या मैं क्यों करती फिरूं, मेरे अपने इतने काम है। तो देखना चाहिए कि हमारे से कितनी खैर लोगों को मिल रही है। वबर्रम बिवालिदती, अबे वालदई इतने कहा उन्होंने, जैसे यहीया अलैहि सलाम ने कहा, क्योंकि उनकी तो सिर्फ माँ ही थी ना, तो मैं अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ, बाप तो था ही नहीं, इसी से पता चलता है कि उनके पास कोई बाप नहीं था जैसे इन्होंने इल्जाम लगाया है, और ना ही अल्लाह ताला के बेटे हैं, वरना वालिदैन कहते, मेरी तो सिर्फ वालदा है, उनके साथ मैं हुस्ने सलूक करने वाला हूँ, वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और ना ही मुझे बनाया है मुतकब्बिर, सरकश और बदबख्त या नाफरमान, जैसे उन्होंने कहा था इसी तरह ये भी कह रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, इनके अंदर भी वैसी ही क्वालिटीज थी, वो आसिया थे, ये शकिया है। तो बाज बच्चे भी अपने वालदैन के लिए बदबख्ती ही होते हैं ना, तो मुझे बदबख्त नहीं बनाया, और वाकई वो तो खुशबख्ती बनने वाले थे अपनी माँ के लिए, कि उनकी माँ का नाम आज तक जिंदा है, किताबों में लोग पढ़ रहे हैं, दुनिया उनका एहतराम करती है, जिस वक्त उनके ऊपर मुश्किल गुजर रही थी उस वक्त लगता था कि हाय ये कितनी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके नाम को और उनकी जात को और उनकी पाकीजगी को रहती दुनिया तक जिंदा रखना था। तो मैं बदबख्त नहीं हूं, वसलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूत व यौमा उबअथु हय्या, और सलामती हो मुझ पर। अब वहां पे आप देखेंगे अल्लाह ताला ने उन पे सलामती भेजी, यहाँ पे अपने आप के ऊपर सलामती भेज रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, खुद नहीं वो कह सकते थे कि मैं, जो इतना थोड़ी उनको पता था, मेरे ऊपर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, इसका मतलब कि जब वो आएंगे और वो मरेंगे उस दिन भी उनके लिए सलामती होगी, और यौमा उबअथु हय्या, और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा, और इसका मतलब ये भी है कि पैगंबरों को भी मौत आती है, ऐसा नहीं कि वो जिंदा ही रहते हैं, वो तो मरते ही नहीं है कभी, जैसे बाज लोगों का अकीदा होता है, और मौत इंसान को ही आती है, वो कोई खुदा नहीं थे, वरना मौत ही ना आती। और वो भी कयामत के दिन ऐसे ही उठेंगे जैसे दूसरे इंसान उठाए जाएंगे जिंदा होके। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये हैं ईसा इब्ने मरियम, यानी जो तुमने समझा हुआ है अपने जहन के अंदर कि वो ये थे या वो ऐसे थे या वो खुदा का बेटा या वो खुद ही खुदा या वो खुदा उनके अंदर हुलूल करके आ गया, ये सब चीजें गलत हैं। ये है ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत, कौल अल हक लदी फीही यमतरून, ये है बात सच्ची जो जिसमें ये शक करते हैं, यानी ये असल वाकया जो हकीकत है उनके बारे में वो ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सच्चाई की बात है और यही इसी के अंदर ये लोग शक करते हैं। उनका शक क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम बेटे खुदा है, तो उन्होंने कहाँ तक बातें बना ली। और यही है जिस जिन आयात को हम तबलीग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम गैर मुस्लिमों को खासतौर पे ईसाइयों को हम दावत दे सकते हैं कि हमारी किताब के अंदर हजरत मरियम के नाम पे पूरा एक चैप्टर है, आओ उस किताब में से देखें कि हजरत मरियम के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हमारे दीन क्या बताता है। और हम तो उनसे भी ज्यादा हजरत मरियम को इज्जत देते हैं, जैसे ये करते हैं हम तो इनसे बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी इज्जत देना ये नहीं है कि उनको खुदा बना लिया जाए, बल्कि जो उनका मकाम है वो उनको दिया जाए और वो वही है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया। इसी तरह यहूदियों ने जिन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उनकी पाक दामनी के ऊपर, उनको बताया जाए कि हजरत मरियम के बारे में कुरान ये कहता है। तो ये हैं जो बातें कॉमनैलिटीज हैं हमारे दरमियान यहूद और ईसाइयों के दरमियान, क्योंकि ये तीनों इल्हामी मजाहिब हैं, आसमानी मजाहिब हैं, और ये हैं वो चीजें जिनको हम तबलीग के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए ये पढ़ना, और इससे जो सबक हमने सीखे हैं अल्लाह ताला इनको हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.